यहाँ सबसे दर्शन आए हैं जी के इतने अच्छे भक्त हैं, आज यहाँ उपस्थित हुए उनके सामने हम कुछ चर्चा कर पाए, हम सबसे पहले उनको हमारा आभार प्रकट करेंगे। उसके उपरांत हम श्री लक्ष्मी नारायण जो उनसे विराजमान है, जिनका भी अभिषेक हुआ है, उनके प्रति बहुत आभारी हैं। और हम आज एक नम्र विनती करना चाहेंगे श्रीपद रामानुजाचार्य के प्रति। इस उत्सव के आयोजकों ने हमको एक विषय दिया है कि कह रहे हैं कि ये जो वर्ष है ये 1000 वर्ष हुए हैं श्रीपद रामानुजाचार्य महाराजा के आविर्भाव के उपरांत। तो हमसे उन्होंने विनती की है कि आप श्रीपद रामानुजाचार्य के बारे में कुछ बताइए। तो कई बार हम इस लक्ष्मी नारायण महोत्सव के दिन भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन एक हमने आज ऐसा मौका ढूंढा है कि आज हम भगवान को उनकी सेवा से अधिक उनके भक्तों की सेवा से खुश करें। श्री कृष्ण भगवान आदि पुराण में अर्जुन को कहते हैं, कहते हैं ये मैं भक्त जना पार्थ भक्त भक्त जो लोग मेरे भक्त हैं, जो कहते हैं कि हम केवल श्री कृष्ण की पूजा करें वो मेरे भक्त नहीं है, तो कहते हैं जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं वो मेरे असली भक्त हैं। तो इसी तत्व के अनुसार आज हम श्रीपद रामानुजाचार्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो रामानुजाचार्य जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है। एक बार एक श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने ये जो भी उन्होंने नाटिका देखी उसमें जो कहानी देखी वो उन्होंने सुनी कहीं, और फिर उन्होंने एक पत्र लिखा श्री प्रभुपाद जी को। उन्होंने एक सवाल पूछा श्री प्रभुपाद जी से, ऐसा लगता है कि है तो बहुत बड़े आचार्य लेकिन क्या उन्होंने गुरु की अवज्ञा की? गुरु महाराज कह रहे हैं हम आपको एक विशेष मंत्र बोल रहे हैं, आप ये किसी को मत बताना। सबसे पहला आदेश अगर गुरु कुछ देता है तो वो तो हमको बहुत मान्यता देंगे। बहुत कम ऐसे शिष्य हैं जिनको निजी तौर से उनके गुरु कोई आदेश देते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु देना नहीं चाहते, पर कई बार देखते हैं कि अगर हम निजी तौर से कोई उनको आदेश देंगे और समझो अपनी कमियों के वजह से ये उस आदेश का पालन नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा अपराध है। अरे गुरु महाराज ने एक इच्छा व्यक्ति उसका पालन नहीं कर पाए, तो कई बार गुरुओं का एक ऐसा एक चिन्ह है कि कई बार अपने शिष्यों को निजी आदेश देते ही नहीं ताकि वो बचे रहे। यहां हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य ने पहली बार शरण ली गुरु महाराज की श्रीमद गोष्ठीपूर्ण, और सबसे पहला आदेश जो दिया निजी तौर से दिया सावधानी रखने के लिए दिया, वो पहला आदेश उन्होंने उल्लंघन कर दिया। तो ये शिष्यों को प्रश्न उठा कि हम इसे क्या समझे, कहते इसको अपने जीवन में गुरु ने श्री प्रभुपाद जी को पत्र लिखा, श्री प्रभुपाद ने इसे बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण किया। ये स्पष्टीकरण हम आपको बताने से पहले एक और घटना बताएंगे जिसके आधार पर आप इस स्पष्टीकरण अच्छे से समझ पाए। हमारे मंदिर में एक बहुत वरिष्ठ भक्त है, वो अपनी कहानी बता रहे थे कुछ दिनों पहले। कह रहे थे हम बैंगलोर में रहते थे और अपना जीवन जीते जीते एक दिन हमको एक वैष्णव मिले और उस वैष्णव ने हमको भगवान के बारे में बहुत ज्ञान दिया, हम बहुत आकर्षित हो गए। धीरे धीरे हमारी आदतें बदली, हमारे विचार बदले, लेकिन हमारे घर वाले नहीं बदले जो अक्सर भेजा जाता है। तो कहते हैं धीरे धीरे ऐसे हो गया कि हमारी आदतें बदल रही है, हमारा अन्न बदल रहा है, प्रसाद के रूप में जो मिलेगा वही खाएंगे, कुछ चीजें हमने स्वीकार की अच्छा वैष्णव बनने के लिए, अच्छा भगवान का भक्त बनने के लिए, और कुछ कुछ वस्तुओं का हम त्याग कर रहे हैं। घर में कभी कुछ कूड़ा होता है, अगर हमको समझे कि ये कूड़ा है तो हम उसको घर से निकाल देते हैं। वैसे हम जब वैष्णव बनते हैं, जब एक अच्छा भक्त बनने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं हमारे दिल में भी बहुत दिल से कोई कूड़ा है जो हम सोच रहे थे तो हमारे गहरे हैं। फिर कोई वैष्णव आके बताते हैं अरे तो कूड़ा है, इसको बाहर देखना चाहिए तो अच्छा है। तो वैसे ये जो भक्त हैं ये बोल रहे थे धीरे धीरे हम कुछ चीजें अपनाने लगे और कुछ चीजें त्यागने लगे। और जब हम कुछ चीजें अपनाते हैं और ध्यान रखते हैं तो घर वालों को एक बात पसंद नहीं होती, तो कहते हैं हमारी माँ को हमसे बहुत प्रेम था और हमारी माँ धीरे धीरे थोड़ी क्रोधित होने लगी। जब से मेरा बेटा उस भक्त के साथ संग करने लगा है तब से बदल गया है, सुना हुआ लग रहा है, तू इतना बदल गया है। फिर आप देखते हैं आइए तो मैं आपका बेटा उठा बताओ, नहीं तू बदल गया है। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जिन भक्तों के प्रचार की वजह से ये लोग धीरे धीरे भक्त बन रहे थे उनके प्रति उनके अंदर बहुत क्रोध आने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो दूसरे भक्त थे वो जब हम मकान में रहते थे, मकान मालिक ने अचानक कह दिया चलो आप घर खाली कर लो, तो जो प्रचारक भक्त है वो थोड़ा दुविधा में आ गए और ये जो शिष्य भक्त है वो स्वीकार कर रहे हैं। अरे ये तो हमारा मौका है गुरु सेवा करने का, तो बोले अरे प्रभु जी आप चिंता मत कीजिए हम हमारे घर में आगे रहने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा घर है, घर तो बड़ा है लेकिन घर वाले लोग वो सोचे नहीं सेवा करने की आतुरता है। तो ऐसा हो गया कि कुछ एक महीने के लिए वो जो प्रचारक भक्त थे वो इनके घर में आके रहने लगे, अपने घर रहने लगे। तो एक दिन जो शिष्य भक्त है उनकी माँ ने उनको बुलाया चलो आ जाओ खाना खाने के लिए, तो खाना खाने से पहले इनको याद आ गया अरे हमारे गुरु जी भी घर गए, तो बोलते अरे उनको खाना खिलाई नहीं आपने, तो माँ बोले अरे छोड़ो गुस्से से क्या उनको खाना खिलाना है, आप मेरे बेटे हो हम आपको खाना खिलाएंगे उनको छोड़ो। उनको समझ में आ गया अरे ये क्रोध केवल अभी आंतरिक नहीं है बाहर भी प्रकट हो रहा है। तो ऐसा एक तो और घटना है जिसमें इनको समझ में आया कि हमारी माँ को भक्त के ऊपर बहुत क्रोध है और कुछ कुछ थोड़े क्रोध भरे शब्द भी उनको सुनाई दिए, तो बोले चलो हम आगे से नहीं करेंगे ठीक है जो भी है जैसा भी है। और कुछ सालों पहले मेरी जो माँ है वे बहुत बीमार पड़ गई और ये जो हमारे प्रभु जी है उस समय शिष्य थे वो उनको मिलने के लिए घर में गए, तो बोले माँ जी आप इतनी दुखी क्यों लग रही है, तो बोले हम दक्षिण भारत के दक्षिण भारत में देखा गया है कि विष्णु भक्ति काफी प्रचलित है, बोले ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं है विष्णु कौन है और विष्णु के भक्त कौन है, लेकिन हमसे एक अपराध हुआ याद है हम जब आप धीरे धीरे भक्त बन रहे थे और गौतम भक्त हमारे घर में आके रुके थे तो हमने कई बार आपके समक्ष उनकी निंदा कर दी, तो हम अब देखते हैं हमारे जीवन में हमको क्या संकोच है, हमको केवल एक ही संकोच है वो है कि हमने उस भक्त की कई बार निंदा की। तो इन भक्त को पूछ रहे क्या भगवान को माफ करेंगे, तो अभी इन भक्त ने क्या जवाब दिया होगा सोचिए, इनके सामने यदि गुरु जी की निंदा हो रही है लेकिन कुछ कर नहीं पाए और बोल नहीं पाए, तो तब ये जो हमारे गुरु जी हमारे मंदिर के गुरु जी उन्होंने अपनी माँ को बहुत अच्छी बात सुनी, कहे कि माँ एक बात बताऊं आपको कि क्यों मैं आपका पुत्र हूं तो आपको हमसे बहुत स्नेह है और हम जहां तक देखते हैं हम जहां तक हमारी दृष्टि है हम ये सोचते हैं कि आप जो हमारे गुरु जी की जो निंदा कर रहे थे वो गुरु जी की निंदा नहीं कर रहे, ये तो आपका हमारे प्रति जो स्नेह है वो एक दूसरे रूप में प्रदर्शित हो रहा है। तो कहते हैं कि गाय को गाय इतनी मृदु प्राणी है ना, कोई भी गाय के पास में जाए तो ऐसे थोड़ा जीवी में जाते हैं गौशाला में जाते हैं थोड़ा आप पास में जाइए वैसे झुक जाएंगे इधर हमको स्पर्श कीजिए कभी कभी निकालने को इधर स्पर्श कीजिए कुछ तकलीफ हो रही है। तो गाय इतनी मृदु प्राणी है हमेशा प्रेम देती है, अभी सोचिए एक व्यक्ति ने जब तो गाय की सेवा की हजारों साल तो उसके प्रति तो और स्नेह दिखेगा उसका, लेकिन कहते हैं जब ऐसी गाय एक बछड़े को जन्म देती है और समझो वो बछड़ा पास में है तो बछड़े के प्रति इतना स्नेह है गाय को कि वो बछड़े के पास कोई भी व्यक्ति अगर जाए तो उनको तकलीफ हो जाती है। तो कहते हैं ये जो तकलीफ है ये किस हद तक जा सकती है कि जिस व्यक्ति ने गाय की सालों साल सेवा की है वो व्यक्ति भी अगर बछड़े के पास जाए तो ये विचलित हो जाती है और अगली बार अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो सिंह दिखाते उस व्यक्ति को भी मारने के लिए संकोच नहीं करेंगे, क्यों अरे ये मेरा नवजात शिशु है ये तो वत्स है ये तो बछड़ा है उसको कुछ मालूम नहीं इस दुनिया में क्या है मैं ही इसकी रक्षण करता हूं। तो जब जिस व्यक्ति ने इनकी सेवा की है उसके प्रति ये गाय जब सीन दिखाएगी तो क्या उस व्यक्ति को भूल ली
कृतज्ञता खत्म हो गई?
नहीं जी नहीं, ये तो अपने बछड़े के प्रति इनका विशेष स्नेह है जो एक अलग रूप से दिख रहा है। और ये उदाहरण ये प्रभु जी ने अपनी माँ को दिया, तो वैसे ही ये माँ, ऐसा नहीं है कि आप उनके निंदक हैं, ऐसा है कि आपका हमारे प्रति जो प्रेम है वो इतना उत्पन्न किया गया कि आप उनके ऊपर वश नहीं रख पाए और आपने हमारे सामने न जानते हुए उनको कुछ निंदा कर दी। तब जाके उनकी माँ को शांति हुई कि चलो हमसे कोई अपराध नहीं हुआ। तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इस नाटिका में भी हम जो देखते हैं बाह्य रूप से, अगर इस नाटिका को देखेंगे तो सोचेंगे अरे इन्होंने तो गुरु के आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। नहीं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, इनको जीवों के प्रति जो दया भाव था वो उस समय उफन गया। तो कहते हैं अरे चलो हम नरक में चले जाए, क्या प्रॉब्लम, उसमें कौन सा बड़ी बात है, जो काम यहां कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, चलो नरक में भी जाएंगे, कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन अगर हमारे नरक जाने से अनेक अनेक असम के लोगों को भगवान नाम का संदेश मिले तो उससे बेहतर क्या होगा, चलो इनका आशीर्वाद हमको मिल जाए। तो ये हमको समझना चाहिए और श्री प्रभुपाद जी ने यही बात अपने शिष्य को उस पत्र में समझाई, वैश्वेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न पूछा। इस वाक्य का मतलब है एक परम वैष्णव शुद्ध भक्त की क्रियाओं को हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, उनको समझने के लिए हमें शुद्धता होनी चाहिए। एक शुद्ध वैष्णव ऐसे भला क्यों आचरण करता है, अरे हमने तो सुना था ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भक्त ऐसा क्यों आचरण करते हैं। तो कोई भी वैष्णव आचार्य को देखेंगे उनके मन में दो प्रमुख भाव होते हैं। प्राय हम ऐसे समझते हैं वैष्णव मतलब विष्णु भक्त, विष्णु भक्त मतलब विष्णु के प्रति उनके मन में बहुत गहरी आस्था है, इसको तो वैष्णव कहते हैं। लेकिन एक महान वैष्णव के दो गुण है, क्या गुण है, एक तो जरूर है कि बहुत भगवान के प्रति उनके मन में आस्था है, आदर है, लेकिन वही आदर वही प्रेम वही स्नेह जब अन्य जीवों के प्रति प्रदर्शित होता है तो उसको कहते हैं दया, उसको कहते हैं प्रचार भावना। तो हम ऐसा कदापि नहीं समझे कि ये जो भक्त है ये इतने महान भक्त है, हमेशा निरंतर भगवान की सेवा करते हैं तो केवल यही भक्त है। और देखो वो भक्त सुबह भगवान की सेवा करते हैं और दिन भर प्रचार कार्य में लगे हैं, तो अरे जिसको भगवान से प्रेम है वो तो भगवान को छोड़ के किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। इस दुनिया में हम देखते हैं जब किसी को एक व्यक्ति से प्रेम हो जाता है तो अपने जेब में उन्हीं का फोटो है, फोन में उन्हीं का वॉलपेपर है, उनके सिवा किसी की याद नहीं आती है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि वैष्णव भक्त है जिनको भगवान से प्रेम है तो भगवान को छोड़ के अन्य लोगों की भी चिंता कर रहे हैं। तो भक्ति लोग ठाकुर को समझाते हैं ये कोई अन्य भावना नहीं है, जिसको भगवान से सही तत्व के आधार पर प्रेम हुआ है वो जानता है ये जो सारे जीवात्मा है ये उन्हीं भगवान के पुत्र और पुत्रिया है। अरे हम भगवान की सेवा करें, पिताजी की सेवा करें और उनके बच्चों को फटकारे डांटे, अच्छा लगे तो पिताजी को नहीं लगे। तो इसलिए महान भक्त का एक लक्षण है जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे वैसे केवल भगवान को अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे, भगवान के भक्तों को भी हृदय में स्थान देंगे। मानिए आप एक किसी पुस्तकालय में अपने घर में कोई अखबार पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो जब मैं सोचता हूं कि जब मैं पुस्तक पढ़ता हूं और सबसे लंबे समय तक मैंने पुस्तक पढ़ी है तो मैंने ऐसा देखा है कोई गर्दन दर्द होती है, लेकिन तो ऐसा देखता हूं मैं कि पढ़ पढ़ के समझो यहां दर्द हो रहा है, तो फिर ऐसा देखा है मैंने लोगों को ऐसे पढ़ पढ़ के दर्द होता है, तो ऐसे देखा और कई बार समझो हम कहीं घूम रहे हैं दर्शन ले रहे हैं तो ऐसे ऐसे बहुत समय चला जाता है तो फिर दर्द होता है। तो ऐसा समझिए कि कोई एक भक्त है जो हमेशा केवल भगवान से नाता जोड़ने के लिए तैयार है, हम और भगवान बस दूसरा कोई नहीं, उसको तो हमारे वैष्णव शास्त्र के अनुसार कनिष्ठ भक्त का ये क्या कह रहे हैं आप, कनिष्ठ मतलब न्यूनतम, जो व्यक्ति भगवान के प्रति आस्था रखता है उसको तो सबसे महान कहना चाहिए। जी नहीं, जो व्यक्ति केवल भगवान से नाता जोड़ता है और किसी और की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता उसको हमारे वैष्णव शास्त्र में कहा है ये तो शुरुआत कर रहा है, ये तो कनिष्ठ भक्त है, इसकी तो भी शुरुआत हुई है। उसके ऊपर है मध्यम भक्त, मध्यम भक्त क्या है? मध्यम भक्त केवल भगवान से नाता नहीं जोड़ता है, और तत्व को जानता है, शास्त्र जानता है, ज्ञान के ऊपर आधारित है, तो सोचता है भगवान को सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भगवान के अनेक अनेक अंश है, इनकी भी हमको सेवा करनी चाहिए, अनेक अनेक वैष्णव है, इनसे हमको मैत्री करनी चाहिए, इनसे हमको दोस्ती करनी चाहिए, और जो अज्ञान में लोग हैं इनको हमको भगवान के बारे में बताना चाहिए। तो आप बोलेंगे अरे अभी और क्या है, कनिष्ठ भक्त ही हमको थोड़ा कंफ्यूज हो गए, आप मध्यम भक्त बोले सबसे ज्यादा जो है, तो अभी उत्तम भक्त क्या है? तो उत्तम भक्त वो है जो सामान्य जन को कहता है ये सारे लोग भगवान से कितना प्रेम करते हैं, ये सारे लोग भगवान के प्रति कोई ना कोई सेवा में रत है, एक केवल हम ही है जो भगवान की सेवा से विरक्त है, ऐसी उनकी भावना हो जाएगी, इसको कहते हैं उत्तम भक्त। तो श्रीपाल रामानुजाचार्य के बारे में श्री प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं कि रामानुजाचार्य जो भक्त है उनको केवल भगवान से आस्था नहीं है, ऊपर नहीं देख रहे हैं केवल, जब ऊपर देखते हैं तो फिर नीचे देखते हैं, इतने सारे लोग हैं जिनको भगवान के पास बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, हमको उनको भी बताना चाहिए। तो ये हम इस नाटिका से सबसे पहले समझ सकते हैं कि अगर हमको अच्छा भक्त बनना है तो केवल पिंपल हॉल में आके हमको दाई नहीं बोलना चाहिए। ऐसा मैं अक्सर देखता हूं जब शाम को यहां पर भी आता हूं मंदिर में तो कोई लोग आते हैं तो जैसे ही मंदिर के इस हॉल में अंदर प्रवेश करते हैं सबसे तत्क्षण दाएं मुड़ जाते हैं, नहीं पहले दाएं मुड़ने से पहले भक्त जो यहां जो नहीं होने भक्त बैठे रहते हैं उनको पहले सादर प्रणाम करना चाहिए, अरे आप सब लोग हमारे पहले मंदिर में आ गए, हम तो देरी हो गई, आप हमारे पहले आ गए आरती देखने के लिए, तो आप हमसे ज्यादा उत्सुक हैं, आप हमसे ज्यादा प्रेरित हैं, तो पहले उनको प्रणाम कीजिए, फिर उनके फिर देखिए वहां श्री प्रभुपाद जी बैठे हैं जिन्होंने भगवान का बहुत प्रसाद करेंगे, पहले उनको प्रणाम कीजिए, तब जाके हम भगवान के सामने प्रणाम करते हैं। तो ये हम श्रीपद रामानुजाचार्य से समझ सकते हैं। एक बार श्री प्रभुपाद जी कहीं एक प्रवचन दे रहे थे भगवदगीता के ऊपर आधारित, तो बीच में ही एक व्यक्ति ऐसे खड़े हो गए और बोले अंग्रेजी में बोले कि हम आपके सामने हिंदी में कहेंगे, बोले हे आचार्य जी हे स्वामी जी आपने तो बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, लेकिन हम आपका व्याख्यान सुन के एक बात सबके समक्ष कहना चाहते, क्या कहना चाहते, आपने जो भी बोला वो तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के गीता के ऊपर जो टीका लिखी है उसमें पहले से ही कह दिया है, तो उसमें आपका श्रेय है, आप कुछ नया कहे तो उसमें कुछ नए हैं, आप तो केवल रामानुजाचार्य ने जो गीता की पूछा तो ये दोहरा रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी उदास नहीं, मायूस नहीं, शर्मा नहीं गए, विचलित नहीं हुए, प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए, बोले चलो कोई तो है जिसको सोने की परख है, हम कब से प्रचार किए जा रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं हम क्या बोल रहे हैं किस दिशा में बोल रहे हैं, चलो एक व्यक्ति निकला जिसको सोने की परख है और खुश हो गए अपनी मुट्ठी ऐसे बोले यस दिस इज माय क्रेडिट आई डिड नॉट चेंज अ सिंगल वर्ड आई जस्ट रिपीटेड माय प्रीवियस आचार्य वर्ड्स, यही तो मेरा श्रेय है कि मैंने कभी कुछ भगवान का संदेश बदला नहीं है, हमारे पूर्व आचार्यों का संदेश बदला नहीं है, रामानुजाचार्य ने जो हमको भगवान के बारे में कहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको जो भगवान के बारे में कहा है, हम केवल वही दोहरा रहे हैं भगवदगीता एज इट इज, हम उसमें कोई जोड़ नहीं रहे हैं, हम उसमें से कुछ निकाल नहीं रहे, यही तो हमारा श्रेय है। देखिए सोच में कितना अंतर है, आज की दुनिया में ऐसा देखा जाता है नया कुछ बोलिए प्रभु जी, सुन सुन के हमको सब पता है, कुछ नई चीज सुनाएंगे, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं जी नहीं हम नया नहीं सुनाएंगे, हम नए तरीके से सुनाएंगे, हम नए तरीके से सुनाएंगे, लेकिन हमारा जो संदेश है वो हम कदापि नहीं बदल सकते। हमारे बहुत एक प्रमुख आचार्य हैं श्री जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी बहुत ही माने हुए पंडित हैं, अनेक अनेक उन्होंने ग्रंथ लिखे, षड गोस्वामी से है, तो कई बार आप उनके अगर षड संदर्भ पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने श्रीमद् भागवत विष्णु पुराण ऐसे कई कई अनेक शास्त्रों में से संदर्भ लिया है, बीच में एक श्लोक कुछ इस पुराण में से बताएंगे, कुछ एक श्लोक महाभारत में से बताएंगे, कुछ दो श्लोक भागवत में से बताएंगे, और उसके आधार पर उन्होंने कुछ कुछ तत्व ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो ये श्री जीव गोस्वामी इतने सारे कुछ कुछ पुराणों में से जो श्लोक बताते हैं, तो एक जगह पे एक स्पष्टीकरण करते हैं, कहते हैं हम आपको सच बताएं, हमने इतने सारे वैदिक ग्रंथ नहीं पढ़े, अरे आप इतने बड़े आचार्य हैं और इतने सारे श्लोक बता रहे हैं, आपने नहीं पढ़े तो आप कैसे बता रहे हैं। कहते हैं हमको बहुत गर्व है, हमको बहुत आनंद हो रहा है आपके सामने ये बात बताने के लिए कि हम इतने सारे ग्रंथों में जितने श्लोक बता रहे हैं वो केवल मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य की टीकाओं के ऊपर आधारित हम श्लोक बता रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है, हम पूरी तरह से हमको पूरा विश्वास है कि अगर रामानुजाचार्य ने कहा है अमुक अमुक श्लोक विष्णु पुराण में है तो वो है, अगर मध्वाचार्य ने कहा है ये श्लोक महाभारत में बताया है वो है, हमको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अरे ये आचार्य है, ये थोड़ी कोई लोभी व्यक्ति है, ये थोड़ी कोई पैसे के लिए कामुक कोई व्यक्ति है, इनको दुनिया से क्या चाहिए, इनको तो दुनिया में केवल देना है। तो ये लोग जो बोलते हैं, ये भक्त जब कहते हैं ये श्लोक है ये तत्व है, हम उसको वैसे का वैसा रिपीट करेंगे और यही हमारा श्रेय है। तो देखिए हमारे आचार्य हमको बता रहे हैं कि हमारा जो भी संदेश है उसकी नींव हमको पक्की करनी चाहिए, उसकी नींव है हमारे पूर्व आचार्यों ने जो संदेश दिया है वो हमारे संदेश की नींव है। अगर हमारे संदेश की नींव फाउंडेशन हम कुछ नई चीज करना चाहे तो फिर हम खुद को भी धोखे में डाल रहे हैं और अन्य भक्तों को भी धोखे में डाल रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि श्रीपाद रामानुजाचार्य ये अनंत शेष के अवतार है, लक्ष्मण जी के अवतार है। कई बार भगवान स्वयं आते हैं इस दुनिया में धर्म का प्रचार करने के लिए और कई बार अपने शुद्ध भक्तों को भी भेजते हैं। तो रामानुजाचार्य के आविर्भाव के पूर्व कहते हैं उनके आविर्भाव की एक पूर्व सूचना हुई थी, तो दक्षिण भारत में एक 12 बड़े बड़े महान संत हैं, उनको कहते हैं अलोवार, तो हम लोग उनको अलोवार बोलते हैं, लेकिन सऊदी का में जाएंगे तो उनको कहते हैं अलोवार बोलते हैं। तो ये 12 अलोवार है जिन्होंने भगवान की भक्ति के बारे में अनेक अनेक ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन संस्कृत में लिखे, तमिल भाषा में लिखे, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका प्रचार हो। तो उसमें से एक अलोवार है जिनका नाम है नम्मो अलोवार, दक्षिण भारत में एक आज भी एक शहर है जिसका नाम है तिरुनेलवेली, फिर तिरुनेलवेली के पास में उनका एक गांव है, तो वहां अपने शिष्यों के साथ रहते थे और इनके बहुत अच्छे शिष्य थे जिनका नाम था मधुर कवि अड़वार। तो जब नम्मो अड़वार इस दुनिया से प्रस्थान कर रहे थे तो ये मधुर कवि अड़वार बहुत ही पीड़ित हो गए, चिंतित हो गए और बोले आप जाने के बाद में इस दुनिया में प्रचार कैसे होगा। तो ऐसा कहते हैं ये जो घटना हो रही है करीब 5000 वर्ष पूर्व हो रही है। तो नम्मो अड़वार बोले आप चिंता मत कीजिए, यहां पास में यहां ताम्र वरुणी नदी है, ये ताम्र वरुणी नदी का आप जल लीजिए और उसको उबालिए। तो मधुर कवि अड़वार तुरंत वह नदी में पानी लिए और उसको उबालने लगे, जैसे ही उबालने लगे देखा कि उस पानी में से एक मूर्ति पकड़ गई। अभी श्रीपद रामानुजाचार्य हम आज बोले शुरुआत में ये हजारों साल की रहे होंगे, हजार वर्ष हो, मतलब श्रीपद रामानुजाचार्य के आविर्भाव के करीब 4000 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो जो मूर्ति निकली वो एक व्यक्ति की थी जो ऐसे आसन में बैठे थे और तिलक लगाया था और पीछे शिखा थी, एक वैष्णव तो वेशभूषा थी उनकी। तो नम्मो अड़वार ने कभी मधुर कवि अड़वार को बताया हम तो इस जगत से जा रहे हैं भगवान के पास, लेकिन प्रचार कार्य के लिए ये व्यक्ति बहुत जल्दी ही प्रकट होंगे और ये हमारा जो अधूरा प्रचार कार्य है इसको संपूर्ण करेंगे। ऐसे कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी इतने महान आचार्य हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने करीब 500 वर्ष पूर्व श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव की पूर्व सूचना सारे जगत को दी। कहते हैं मोर सेनापति भक्त, अनेक अनेक भक्त हैं मेरे लेकिन एक सेनापति भक्त है। सेनापति क्या करते हैं, सारी सेना के आगे खड़ा रहते हैं, लड़ाई करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में उन्होंने उल्लेख किया था मोर सेनापति भक्त, वैसे रामानुजाचार्य भी एक सेनापति भक्त है, उनके बारे में नम्मो अड़वार ने पहले कह दिया। फिर ऐसा कहते हैं कि श्री पेरम्बुदूर नाम का एक बहुत ही अच्छा जगह है साउथ इंडिया दक्षिण भारत में, वहां एक केशव सोमया जी नाम के बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, हमेशा भगवान की सेवा करते थे। और तिरुपति में श्री शैलपूर्ण नाम के पुजारी थे जो भगवान की सेवा के लिए, तिरुपति भगवान की सेवा के लिए जल लेके आते हैं, उनकी बहुत सेवा थी। उनकी दो बहनें थी, तो उसमें जो ज्येष्ठ बहन थी उनकी, उनका नाम था कांतिमती। तो ये कांतिमती जी का विवाह हो गया केशव सोमैया जी से और दोनों श्री पेरम्बलूर में रहने लगे। और इन दोनों बहुत अच्छे वैष्णव भक्तों को पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था रामानंद जी। तो कहते हैं शुरुआत में ही उनका उपनयन संस्कार हुआ, तो कहते हैं 7 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार हुआ। और क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं तो उनके जो स्वयं के पिता हैं वो भी उनको शिक्षा दे सकते हैं, तो उन्होंने 7 वर्ष की आयु से ही शिक्षा प्रारंभ कर दी। 16 वर्ष की उम्र में उनकी उनका विवाह संस्कार हो गया। उनकी पत्नी का नाम था तंजाम्बा, इनके साथ उनका विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद में एक गृहस्थ जीवन शुरू हो गया। उनके पिताजी ने सोचा अब आगे के लिए कुछ कार्य करना चाहिए कि इनको वेदों में शिक्षा मिलनी चाहिए। वैसे कहते हैं हर ब्राह्मण के 6 कर्तव्य हैं। क्या क्या है कर्तव्य? पठन पाठन, यजन याचन, दान प्रतिग्रह। पठन मतलब उनको शास्त्रों का पठन करना चाहिए। चलो हम पठन करेंगे, हम सीखेंगे, जीने। पाठन पाठन मतलब आप सीखिए और सिखाइए। यजन यजन मतलब भगवान की पूजा कीजिए। और याचन याचन मतलब दूसरों को सिखाइए कि भगवान को कैसे पूजा करते हैं। और दान मतलब आप भी हमेशा दान दीजिए। और प्रतिग्रह मतलब अगर कोई आपको दान दे तो वो भी कृतज्ञता पूर्वक भगवान की कृपा समझ के उसको स्वीकार। ये 6 है ब्राह्मण के। तो पिताजी सोच रहे हैं रामानुजाचार्य को ये 6 कर्तव्य सिखाने चाहिए उनको, तो उन्होंने एक गुरु को ढूंढा। और उस वक्त उस प्रदेश में एक बहुत अच्छे सन्यासी थे जो बहुत मशहूर थे, इनका नाम था यादव प्रकाश। तो उन्होंने उनसे याचना की हमारे पुत्र को आप सिखाएंगे, वहां सिखाएंगे। और उन्होंने शिक्षा प्रारंभ कर दी। एक दिन ऐसा हुआ कि यादव प्रकाश जी जो थे वो थोड़ा सिखा रहे हैं अपने शिष्यों को, तो कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म भगवान के दिव्य शरीर में से जो तेज आता है वही सत्य है, उसमें ज्ञान है, वो अनंत है। ये सुन के रामानुजाचार्य थोड़ा सोचने पड़ गए कि ये व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि व्यक्ति की शक्ति के बारे में बोल रहे हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ एक दिया है, तो दिया एक जगह पे दिया है और उसमें से रोशनी निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, तो एक तरह से दोनों अभिन्न है। लेकिन रोशनी या प्रकाश उस दिए के ऊपर आधारित, जैसे शास्त्रों के अनुसार भगवान के अनेक अनेक रूप है, एक रूप है भगवान के शरीर में से दिव्य प्रकाश है, उससे वो सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है अपनी शक्तियों के आधार पर। लेकिन एक देश स्थित ज्योत्सना विस्तारी होता, जैसे एक जगह पे ज्योत्सना होती है लेकिन उसका प्रकाश सर्वव्यापी होता है, वैसे भगवान एक जगह पे है, भूलोक एव निवसति अखिलात्म भूत, भूलोक में निवास करते हैं लेकिन फिर भी अखिलात्म भूत हर व्यक्ति के हृदय में भी है। तो रामानुजी ने सोच रहे हैं शायद ऐसा बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब यादव प्रकाश जी को पूछा, यादव प्रकाश जी बोले जी नहीं, हम केवल व्यक्ति को नहीं मानते हैं, हम व्यक्ति को नहीं मानते, हम केवल शक्ति को मानते हैं। हम ये मानते हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति नहीं है, परम सत्य के कोई गुण नहीं है। ये सुन के रामानुजाचार्य जी को बहुत ही दुख हुआ। छोटे युवा है लेकिन फिर भी क्योंकि अनंत शेष के अवतार है, दशरथ जी के अवतार है, तो सबको ज्ञान है। एक दिन गुरु सेवा कर रहे थे, तो गुरु सेवा क्या कर रहे थे, तो अपने पीठ की ओर थोड़ा तेल लगाना और उनको थोड़ा मसाज कर रहे थे। तो ऐसे गुरु कह बैठे बैठे कुछ कुछ कहते रहते हैं, तो कहते 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 हैं यादव प्रकाश कहते हैं तस्य यथा कप्या संपुंडरीकम एवं अक्षी। अपने शिष्य को ज्ञान दे रहे, अरे आप हमारी सेवा कर रहे हैं, हम भी कुछ प्रतिशत देंगे आपको, ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। कप्यासम, कपि संस्कृत में बंदर को कहते हैं, वाणी। और आसन होता है उनका आसन, मतलब जहां वो बैठते हैं उस भाव को कहते हैं आसन। तो कहते हैं पता है विष्णु की आंखें कैसी है, कहते हैं ऐसे थोड़ी लाल लाल जैसी आंखें। कई बार शास्त्रों में आता है कि उदय होते हुए सूरज का जो कलर है रंग है, वैसे भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की आंखें थोड़ी ऐसी लाल जैसी। तो इसके लिए उपमा क्या दे रहे हैं यादव प्रकाश जी, कहते हैं बंदर का जो पिछला भाग है वो कैसे लाल रहता है, वैसे विष्णु की आंखें लाल रहती है। जैसे ही रामानुजाचार्य ने सुना तो रामानुजाचार्य की आंखों में आंसू आ गए और एक या दो नहीं है बहुत आए, तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, उनके गुरु के कंधे के ऊपर उनकी आंखों की आंसू टक 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 गिरने लगे। कहते हैं कि खुशी के आंसू ठंडे हो और दुख के आंसू गहरे हो गए। देखिए अगले बार और जब आपके सामने कोई व्यक्ति हो रहा है तो आंसुओं को स्पर्श करके आपको समझ में खुशी के आंसू दुख के आंसू, तो उसमें भी कुछ गलती हो जाए आप बोले खुशी के आंसू है हालांकि उनके दुख के आंसू हो। तो जब उनको स्पर्श हुआ आंसू तो बोले क्या हो गया मनोज, समझ में नहीं आया लगता है आपको कुछ, क्योंकि कई बार जब यादव प्रकाश ऐसे कुछ कुछ तत्व ज्ञान बोलते हैं तो रामानुज जी कंफ्यूज दिखते, क्यों कंफ्यूज दिखते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो दुख होता ये जान के कि इतने बड़े सन्यासी है, इतने बड़े गुरु है, इतने सारे शिष्यों को स्वीकार किए हैं लेकिन अज्ञान बांट रहे। अरे गुरु है तो पहले जानिए कि सत्य क्या है, बाद में दूसरों को बताइए। खुद अगर अज्ञान में तो दूसरों को ज्ञान कैसे देंगे। जन्म सार्थक करी कर्म करोगे का, जब खुद को हम सार्थक करेंगे तब जाके किसी को प्रचार करना चाहिए। तो रामानंद जी रमन जी ने हमको समझ में नहीं ऐसी बात हुई है तो क्या हुआ, बोले आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, ये उदाहरण आपके मुख से निकल भी कैसे सकता है कि भगवान विष्णु जो इतने सुंदर है उनकी आंखों की कंपेरिजन आप एक बंदे के पिछले भाग से कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि उस शब्द का अर्थ क्या है। तो संस्कृत भाषा की विशेषता है कि एक एक शब्द अनेक अनेक उसके मूल शब्द है उनको जोड़ के बना है संस्कृत शब्द। तो कोई भी आप संस्कृत शब्द लीजिए ऐसा नहीं कि उसका कोई अर्थ नहीं है, अगर आप संस्कृत भाषा जानेंगे और धातुओं को जानेंगे एक एक छोटे छोटे शब्द को जानेंगे तो आप कोई भी आप हम आपको एक बड़ा शब्द दे दें तो आप धातुओं को रच रच के अगर जोड़े उसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बड़े शब्द का अर्थ क्या है। तो रामानुजाचार्य कह रहे हैं क मतलब सूर्य, पी मतलब उसको पीना और आसन मतलब वह चीज जो सूर्य को पीती है, सूर्य को कुछ ले रही है सूर्य से। तो कहते हैं ऐसी कौन सी चीज है, तो कहते हैं कमल का फूल। तो कमल का फूल हालांकि पानी में है, पानी को पीता है, पानी पी रहा है लेकिन सूर्य से रोशनी नहीं लेता है। और जब कहते हैं कि कमल का फूल केवल पानी है लेकिन सूर्य प्रकाश नहीं तो मूर्छा जाता है, और कमल के फूल को केवल आप सूर्य प्रकाश दो और पानी नहीं दो तो भी मूर्छा जाता है, उसको दोनों चीज चाहिए। तो पानी पी रहा है और सूर्य प्रकाश है रोशनी दे रहा है। तो कहते हैं यहां अगर श्लोक में बताया कि उनकी लाल लाल आंखें हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप उसका उदाहरण बोल रहे हैं। एक कमल के फूल में कैसे लाल गुलाबी रंग होता है वैसे भगवान कृष्ण की भगवान विष्णु की आंखें हैं। तो ये सुनके बहुत सही है, व्याकरण के आधार पर सही है, लेकिन केवल व्याकरण के आधार पर सही है, ये भावनाओं के आधार पर सही है, ये तत्व ज्ञान के आधार पर भी सही है। लेकिन गलती ये हो गई रामानुजाचार्य से कि उन्होंने अपने गुरु के सामने इसका उल्लेख किया और गुरु को फिर से एक बार एक उनको दुख हुआ, हम गुरु हैं ये गुरु है, शिष्य का उत्तरदायित्व है गुरु से चुपचाप सुनना और ये तो हमेशा बोलते रहते हैं। तो देखिए हमने इस नाटिका में भी देखा कि कैसे बाह्य रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपने गुरु को आज्ञा नहीं मान रहे। इस अभी हमने जो आपको घटना बताई इसमें भी ऐसा प्रतीत होगा कि ये गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं, लेकिन इसलिए हमने पहले ही आपको एक नींव बता दी कि जो बहुत उच्च स्तर के भक्त होते हैं उनको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझते, हमको दूसरे तरीके से उनको समझना चाहिए। ये तो उनका भगवान के प्रति प्रेम और इस नाटिका में उनका जीवों के प्रति दया भाव ये उपर किया है। तो ये लक्ष्मण जी के अवतार है। तो हम रामायण में से आपको घटना सुनाते हैं ऐसा कहते हैं श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी जब वनवास में थे तो एक समय पे अगस्त ऋषि से मिले, तो अगस्त ऋषि ने कहा आप इस दिशा में आगे जाइए और पंचवटी है नासिक में वहां रहिए, वहां पवित्र गोदावरी नदी है, वहां सूर्य में वातावरण है, वो स्थान आपको वनवास में रहने के लिए बहुत ही उत्तम है, उचित है, वहां आप रहिए। तो ऐसा कहते हैं रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी जब वहां पहुंचे तो रामचंद्र जी ने थोड़ा मुआयना किया, थोड़ा देखा उन्होंने, देखे कि लक्ष्मण देखिए नदी के पास में ये जो स्थान है ये बहुत अच्छा है, यहाँ जो धरती है उबड़ खाबड़ नहीं है, ऐसे एक ही स्तर पे है, पानी यहाँ पास में है तो हम भगवान की अच्छे से सेवा कर सकते हैं, यहाँ वृक्ष है, फल है, यहाँ कोई मुझे जंगली प्राणी की ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगस्त ऋषि ने हमको जो स्थान बताया था वही स्थान हम यही अपनी पर्णकुटी बनाएंगे। तो तब जो आदेश देते हैं लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण को कहते हैं हमारे लिए कुटी बनाइए जहां हम और सीता जी रहेंगे और आपके लिए भी कुटी बनाइए। जैसा कहते हैं उस समय लक्ष्मण जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। तो एक आचार्य कहते हैं राम जी ने उनको पूछा लक्ष्मण हमने आपको ये ऐसे आदेश दिया, आप तो हमारे भाई हैं, आप हमारे नौकर नहीं हैं, तो क्या एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को ऐसे आदेश दे दिया कि चलो हमारे लिए घर बनाइए, क्या इस वजह से आपको दुख हुआ? अरे हमारे भैया ने हमको नौकर बना दिया, कभी कभी इस दुनिया में ऐसा होता है, क्या उस वजह से आपको दुख हो रहा है? तो लक्ष्मण ने कहा भैया जी नहीं, हमको दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने हमको आदेश दिया आप हमारे लिए एक पर्णकुटी बनाइए और आप स्वयं के लिए दूसरी पर्णकुटी बनाइए। ये आपने
खुद में और हम में जो भेदभाव किया है इससे हमको दुख हुआ, इससे हमारे अश्रु बहने लगे। हम तो आपके सेवक के रूप में अयोध्या छोड़ दिए, हमारा भी विवाह आपके विवाह के साथ हुआ था, हम अपने पत्नी को छोड़ दिए, तो सेवा करने में हमको कौन सा दुख है? लेकिन आपने जो कहा कि आप अलग से पर्णकुटी बनाइए, ये जो भेद किया आपने इससे हमको दुख हो रहा है, हम तो आपके नित्य किंकर है, हम तो आपके नित्य दास है, यही तो हमारा परम सौभाग्य है। तो जैसे उस समय भी लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आए थे क्योंकि उन्होंने उनको थोड़ा दूर कर दिया, वैसे वही लक्ष्मण जी जब रामानुजाचार्य जी के अवतार में आ रहे हैं तो देख रहे हैं विष्णु की अगर कोई अवहेलना करे, विष्णु के बारे में अगर कोई गलत शब्द कहे तो उनके आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे हुआ कि बाकी सब अन्य शिष्यों को भी समझ में आया ये रामानुजाचार्य है शिष्य, लेकिन इसकी सोच, इसकी समझ, इसकी भावनाएं बहुत उत्तम है, इसका संस्कृत का ज्ञान बहुत उत्तम है और हमारे गुरु जी उनके अधीन है। तो ये किस गुरु को अच्छा लगता है? खास करके अगर ये ऐसे कोई दंभी गुरु हो तो उनको तो कदापि अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा कहते हैं ये यादव प्रकाश जी जो थे ये वैष्णव गुरु नहीं थे, ये एक मायावादी गुरु थे जिनकी तत्व का ये आधार ही है कि कुछ क्षण तक, कुछ दिनों तक हम भगवान की पूजा करेंगे लेकिन किस भाव से? जैसे कभी हम कोई एक बिल्डिंग में चढ़ते हैं तो पहले सीढ़ियां होती है, वो सीढ़ियां तब तक हमारे लिए फायदेमंद है जब तक हम पहले मंजिल पे नहीं पहुंचे। अगर हम निचली मंजिल पे हैं तो फिर सीढ़ियां चढ़ के, सीढ़ियों का फायदा लेके हम पहली मंजिल पे पहुंचेंगे। जो एक बार व्यक्ति पहली मंजिल पे पहुंच गया उसको उन सीढ़ियों का क्या काम भला? तो उसको बाद में पूछिए आप, अरे आप पहले मंजिल पे पहुंच गए, सीढ़ियां कुछ काम की है? सीढ़ियों का काम हो गया, हमारा काम हो गया, अब हमको सीढ़ियों से कुछ लेना देना नहीं है। तो कई बार ऐसे भी कोई संत हैं जो दिखने में बहुत अच्छे संत लगते हैं लेकिन उनके मन में क्या भावना है? कहते हैं विष्णु जी, विष्णु की मूर्ति, विष्णु का नाम, विष्णु की लीला हम चर्चा करेंगे, विष्णु की मूर्ति की पूजा हम करेंगे, विष्णु का नाम हम लेंगे, लेकिन कब तक? जब तक हम पहली मंजिल पे नहीं पहुंचे, जब तक हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाए। क्या? जब तक हम परम शुद्ध नहीं हो जाए और हम भगवान के रूप में, भगवान के अस्तित्व में विलीन नहीं हो जाए। हमको हमारी मंजिल मिल गई, अब हमको विष्णु से क्या लेना देना? विष्णु का जो रूप है यह अस्थायी रूप है, विष्णु का नाम है यह अस्थायी नाम है, विष्णु की लीलाएं अस्थाई लीला है, हम उनका केवल उपयोग करेंगे, ये हमारा गंतव्य स्थान नहीं है। दिस इज नॉट अवर गोल, दिस इज अवर टूल। ये तो हमारा साधन है हमारे मन में जो भावना है उसको प्राप्त करने के लिए। तो ये यादव प्रकाश उस ग्रुप में से थे जो विष्णु की आराधना केवल एक साधन के माध्यम से करना चाहते थे। उनको विष्णु से प्रेम नहीं है। चैतन्य लीला में भी एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम था रामदास विप्र। तो ऐसा कहते हैं षड गोस्वामियों से, मैं एक गोस्वामी है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वाराणसी से श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में आ रहे हैं। तो रास्ते में एक स्थान पे ये जो व्यक्ति थे वो जुड़ गए उनसे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सोच रहे हैं, अरे कितने अच्छे भक्त हैं ये, क्यों? क्योंकि ये रामदास विप्र हमेशा राम नाम लेते थे, राम 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 राम। और जैसे ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से मिले तो बोले, हे स्वामी जी, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। क्या सेवा करेंगे? हम आपके चरण दबाएंगे, हम आपका जो सामान है वो अपने सर पे उठाएंगे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इतने नम्र थे, बोले कि जी नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप भगवान की सेवा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, हमारा सेवा मत कीजिए। लेकिन बोले, नहीं नहीं, हमको आपकी सेवा करने में परम आनंद आ रहा है। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का सामान लेते हुए, राम नाम लेते हुए उन्होंने उनका संग किया जगन्नाथपुरी में आने तक। जैसे ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में मिले, श्री चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो गए, उनको आलिंगन किया, बोले आज का प्रसाद आप हमारे साथ लीजिए, पहले जाके जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, दोपहर का प्रसाद हम दोनों साथ में लेंगे। फिर उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से उनकी भेंट करा दी और बोले, ये रघुनाथ है और आज से ये पुरी में रहेंगे, आप इनको अन्य वैष्णवों से परिचय करा दीजिए, और खुद फिर अपने स्नान के लिए चले गए। तो कहते हैं 8 महीनों तक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उस समय जगन्नाथपुरी में रहे, और कई बार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद भी बनाया। लेकिन इन 8 महीनों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक भी बार उस रामदास विप्र से कभी बात नहीं की, उनके तरफ एक झुक के देखा भी नहीं उन्होंने। तो फिर एक भक्त के मन में सवाल उठेगा, अरे ये क्या भेदभाव कर रहे हैं? दो भक्त मिलने के लिए आए वाराणसी से पूरी, एक भक्त को आलिंगन कर रहे हैं, एक भक्त को बोल रहे हैं आज हमारे साथ प्रसाद लीजिए, एक भक्त को पहचान करा रहे हैं सारे वैष्णवों से, उनका बनाया हुआ प्रसाद खुद स्वीकार कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और उनके साथ ही साथ जो भक्त आए हैं उनको पूरा उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया, दुर्लक्ष कर दिया उनको। क्या यह भेदभाव है? जब भी हम किसी व्यक्ति को ऐसा बर्ताव करते हुए देखेंगे जिससे हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तो हमको क्या सोचना चाहिए? हम आपको 2-3 बार बोले आज के क्लास में, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेना बुझाए। जो भक्त जितना उच्च स्तर पे है उतना उसकी क्रियाएं हम बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो इसलिए हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी भेदभाव कर रहे थे। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु को किसी ने पूछा, महाप्रभु आप इसको इतना प्रेम करें, इसको कुछ भी नहीं देख रहे, ऐसे क्यों? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, हम उसके दिल की बात जानते हैं, ये व्यक्ति एक ढोंगी है, ये रंग बदलने वाला गिरगिट है। अरे कैसे रंग बदलने वाला गिरगिट है? बाह्य रूप से तो राम 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 का नाम ले रहा है, लेकिन इसके मन में क्या कामना है मालूम है? इसको राम के अस्तित्व में विलीन होना है। कहता है पूरी दुनिया राम की पूजा कर रही है तो राम भगवान है, अगर मैं भगवान के अस्तित्व में विलीन हो जाऊं तो इस माध्यम से सारे लोग मेरी पूजा करेंगे, क्योंकि मैं और भगवान एक हो गए तो मैं भी एक रूप से भगवान हो गया, तो फिर भगवान लोग जब मेरी पूजा करेंगे तो मेरी पूजा कर। देखिए अहंकार अगर किसी के मन में है, किस किस माध्यम से अपना अपना चेहरा दिखा सकता है। कई बार हमको लगता है कि जो अभक्त है वो केवल वो ही अहंकारी हो सकते हैं। जी नहीं, आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले लोग भी कई गुना ज्यादा अहंकारी हो सकते हैं। केवल उसको परखने के लिए, उसको जानने के लिए शायद हमारे पास समझ नहीं है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को यह समझ थी। तो कहते हैं जो भी व्यक्ति भोग करेगा और कहेगा कि हे भगवान आप आनंद लीजिए, लेकिन हमको भी, वो भी भगवान से द्वेषी है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा वो विरक्त सन्यासी भोगी है जो भगवान में अपना अस्तित्व विलीन करना चाहता है और उस माध्यम से भोग करना चाहता है। अमेरिका में एक हमारा मंदिर है जहां हमारे श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य है रविंद्र स्वरूप प्रभु। एक दिन वो एक मंदिर में थे तो एक भारतीय व्यक्ति अमेरिका में उस मंदिर में आए और भगवान के सामने जब दर्शन ले रहे थे तो उनके भी आंखों में आंसू आ गए। अरे वाह, ये आंखों में आंसू आने वाले बहुत सारी कथा है आपके पास। तो ये रविंद्र स्वरूप प्रभु खुश हो गए, बोले तो बहुत कम होता है ऐसे आंखों में आंसू आना। तो उनको जाके पूछे, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो बोलते हैं, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं ये देख के कि आप सब लोग मेरी पूजा कितने अच्छे से कर रहे हैं। तो रविंद्र स्वरूप प्रभु को समझा, अरे बाप रे, हम तो सोच रहे थे ये चैतन्य लीला में 500 वर्ष पुरानी बात है, आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो आंसू बहाते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन उनको पूछिए आपके नाम लेने का मकसद क्या है? तो कहते हैं, हमको राम बनना है, हमको कृष्ण बनना है, हमको सेवा नहीं करनी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए उस रामदास विप्र को कर्ण मात्र भी ध्यान नहीं दिया और उनको पूरा दुर्लक्ष कर दिया। तो ये मायावाद कहते हैं इसको, बाह्य रूप से बहुत विरक्त, कोई भी बुरी आदत नहीं, शास्त्रों में निपुण, लेकिन मन में भावना भगवान की तरह भोग करने की। तो ये जो यादव प्रकाश थे ये इस ग्रुप के थे, इसलिए हमेशा शास्त्रों में अलग अलग चीजों से भगवान का तिरस्कार कर रहे हैं और रामानुजाचार्य सहन नहीं कर रहे। तो ऐसे गुरु अगर होंगे वो सही में गुरु नहीं है। गुरु मतलब क्या? तो एक एक भक्त है, उदाहरण देते हैं। सोचिए आप एक जहाज पे हैं, समुद्र में एक जहाज पे हैं और मीलों दूर तक केवल पानी ही पानी, समुद्र का पानी दिख रहा है, कहां है जमीन? और उतने में कई दूर आपको थोड़ा धुआं आते हुए दिखा तो आपको लग रहा है आशा की किरण नजर आई, शायद यहां ही कोई जमीन है, शायद कोई टापू है, शायद जमीन आ गई, जो भी है। तो अभी आपको मालूम करना है कि कहीं ये धुआं दूसरे जहाज में से तो नहीं आ रहा है, टापू है, जमीन है, क्या है? उस समय आपको क्या वस्तु काम में आएगी? दूर कहीं धुआं दिख रहा है और आप जहाज में है तो आपको यह तय करना है, जहाज का रुख आप उस तरफ मोड़े कि आप अपने ही प्रवास पे आगे बढ़े, क्या आप उपयोग करेंगे? दूरबीन है कि नहीं? तो कई बार जब जहाज पे लोग जाते हैं तो एक टेलीस्कोप लेके जाते हैं, या कभी कभी दूरबीन, जैसे को बाइनोक्युलर कहते हैं। तो टेलीस्कोप में क्या रहता है? एक ऐसा यंत्र है जिसमें उसको ऐसा खींच सकते हैं लंबा, और उसमें कांच होती है, लेकिन वो कांच ऐसी अरेंज की है, अलग अलग प्रकार की कांच है, कि वो सब कांचों में से हम देखें तो दूर की वस्तु पास में नजर आती है। तो एक सबसे पहला गुण है उस कांच का कि वो पारदर्शी होनी चाहिए, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप उसको कुछ और चीज को देख नहीं पाएंगे, लेकिन केवल ट्रांसपेरेंट होना पूर्णता नहीं है, उसमें मैग्निफिकेशन पावर होना चाहिए, दूर की चीज पास में करने की शक्ति होनी चाहिए। तो ऐसा कहते हैं गुरु, हमारे जो गुरु है इनका ये गुण है, एक तो वो ट्रांसपेरेंट है। अगर हम गुरु महाराज को, अगर उनको हम बढ़ाई करें, हम उनको कृतज्ञता व्यक्त करें, ऐसा नहीं कि गुरु महाराज केवल कृतज्ञता को लेकर बोलते अच्छा अच्छा बहुत अच्छे, अब आप सीखे जीवन का ध्येय क्या है, हमारी बढ़ाई करना, हमारी तरफ कृतज्ञता व्यक्त करना, जी नहीं, वो ट्रांसपेरेंट है। मतलब आप गुरु को जो प्रशंसा करते हैं, जो गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, वही गुरु महाराज अपने गुरु के प्रति व्यक्त करते हैं। और ऐसे एक परंपरा है जो हम जानते हैं जिससे ज्ञान नीचे आता है, वैसे एक दूसरी परंपरा है जिससे हमने दिया हुआ कृतज्ञता ऊपर एक गुरु उनके गुरु को दे के देते वो भगवान तक पहुंचती है। तो एक है पारदर्शी, ये एक गुण होता है गुरु का, और दूसरा है दूर की चीज पास में दिखाते हैं। तो जैसे हम टेलीस्कोप या बाइनोकुलर में देखते हैं, भगवान भी हमको गुरु के माध्यम से पास में दिखते हैं, लेकिन ये यादव प्रकाश भगवान को पास में नहीं ला रहे, दूर कर रहे। तो इसलिए यादव प्रकाश के मन में बहुत सारा द्वेष था और सोचे ये रामानुजाचार्य की हत्या कर दूं मैं। सोचिए इतना द्वेष है मन में कि अपने शिष्य की हत्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक यात्रा निकाली, लेकिन ये यात्रा भगवान के दर्शन की यात्रा नहीं थी, शिष्य हत्या के लिए यात्रा। क्या यात्रा निकाली इन्होंने? बोले चलो काशी जाएंगे, काशी में गंगा जी में स्नान करेंगे और सारे शिष्यों को लेके निकले। लेकिन उस ग्रुप में रामानुजाचार्य के एक मौसेरे भाई थे जिनका नाम था गोविंद। तो ये गोविंद जी जो थे, इन्होंने उनको बताया कि ऐसा सुनने में आया है, बाकी शिष्यों से हमको समझ में आया है कि गुरु जी आपको मारने के लिए केवल कहीं दूर लेके जा रहे हैं, और जब आप गंगा जी में स्नान करने जाएंगे तब आपको किसी माध्यम से डुबो देंगे उसमें, गंगा जी में, और लोगों को बोलेंगे अरे वो तो नदी का प्रवाह था तो रामानुज डूब गया। तो तुरंत आप आज इस जगह से भाग जाइए। तो क्योंकि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की दिशा में जा रहे थे, तो जिस स्थान पे ऐसा कहते हैं विंध्य पर्वत थे वहां पे, उस स्थान में रामानुजाचार्य को गोविंद ने कहा कि आप तुरंत इस जगह से भाग जाइए। तो रामानुजाचार्य उसी रातों रात वहां से ग्रुप छोड़ के भाग गए। तो सोचे सब लोग तो अभी उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो मैं दक्षिण दिशा में जाता हूं। अगले दिन उठ के जब गुरुजी ने देखा रामानुजाचार्य कहां है, अरे जो असली हमारा ध्येय था यात्रा का वो तो पूरा नहीं होगा। लेकिन फिर बाकी शिष्यों ने कहा गुरुजी इतने बड़े अरण्य में अगर कोई एक युवा अगर घूम जाए तो ये जो जंगली प्राणी है उसको जीने देंगे क्या? आप चिंता मत कीजिए, काम हो गया आपका और बहुत आसानी से हो गया। तो गुरुजी सोचे चलो ठीक है, जो भी ईश्वर की इच्छा। कभी कभी ये लोग भी शरणागति दिखाते हैं, लेकिन वो भी अपने काम के लिए। तो रामानुजाचार्य ऐसा कहते हैं वहां से जो भागे तो दक्षिण की दिशा में भागे, और भागते भागते एक जंगल में पहुंचे। तो जंगल में उनको अभी कौन सहायता करे, कौन उसको मदद करे, तो कहते हैं एक शिकारी दिखे उनको, शिकारी और उनकी पत्नी थी। वो बोले अरे आप भागते भागते बहुत ही व्याकुल लग रहे हैं, आपने कुछ खाया है क्या? तो बोले नहीं, कई दिनों से हम कुछ खाए भी नहीं है। तो उनको बिठाया खिलाया और रात को उनको सुलाया। सुबह उठ के रामानुजाचार्य ढूंढे कहां है वो, तो कहीं दिखे नहीं उनको। फिर थोड़ा आगे चलने लगे तो उनको कुछ और व्यक्ति मिले, तो बोले इस जंगल में कोई शिकारी है क्या, और ये शिकारी बहुत कृपालु है क्या? क्योंकि शिकारी हम जानते हैं कि बहुत क्रूर होते हैं, लेकिन ये जो जो शिकारी और उनकी पत्नी थी उन्होंने हमारा संगोपन किया, हमको खाना खिलाया सुलाया, तो ऐसा कोई है क्या? तो तब उन व्यक्तियों ने कहा आपको पता है आप कौन से स्थान पे आए हैं, कौन से स्थान पे आए? बोले आप कांचीपुरम आए हैं। और कांचीपुरम में वो देख रहे हैं विमान, देख रहे हैं विमान, मतलब दक्षिण भारत में जब कोई भी विष्णु मंदिर होता है तो उसके ऊपर एक ऐसे अलग एक गोल सिलिंड्रिकल ऐसे एक आकार होता है। जैसे कई बार उत्तर भारत में हम देखते हैं तो ऐसे एक कलश होता है ना, ऐसे पॉइंटिंग होता है, लेकिन दक्षिण भारत में मंदिर के ऊपर ऐसे ऐसे लंबा सा कुछ होता है, उसको विमान कहते हैं। तो वो और भगवान अभिन्न है, जैसे जगन्नाथपुरी में चक्र और भगवान अभिन्न है वैसे। तो कहते हैं वो देख रहे हैं विमान, अरे वही तो है, वरदराज जी यहां रहते हैं, विष्णु भगवान रहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि वरदराज जी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, तो शायद वो भगवान ही थे जिन्होंने आपको अन्य रूप में आके आपका उन्होंने देखभाल की। तो रामानुजाचार्य का हृदय द्रवित हो गया, कहते अरे भगवान ने हमको दर्शन दिया और हम उनको पहचान नहीं पाए, चलो हम एक काम करेंगे यही रहेंगे। और उस समय से वो उसी वरदराज मंदिर में रहने लगे। उस समय वरदराज मंदिर में एक बहुत महान भक्त थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण। तो ये कांचीपूर्ण क्या करते थे, बहुत सिंपल सेवा करते थे, कोई बड़े ऐसे संस्कृत में विद्वान पंडित नहीं थे। चामर रहता है ना, जैसे आरती में हम देखते हैं एक सफेद वस्तु है, देखिए उससे भगवान को ऐसे करते हैं आरती में, उसको कहते हैं चामर। तो ये जो कांचीपूर्ण है ये उस मंदिर में यही सेवा करते थे, क्योंकि कांचीपूर्ण दक्षिण भारत में है, कांचीपुरम, तो गर्मी होती है वहां पे अक्सर, तो भगवान को थोड़ा आराम मिले इसलिए दिन भर वहां खड़े होके भगवान के समक्ष ऐसे उनको चामर करते थे, उनको पंखा लगाते थे, उनको थोड़े हवा लगने दीजिए। तो रामानुजाचार्य ने देखा हमारे एक गुरुजी थे जो सन्यासी थे, वेदों में बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी भावनाएं कभी सेवा की नहीं थी। और ये कांचीपूर्ण है जो ब्राह्मण परिवार में भी नहीं जन्मे हैं, सन्यासी नहीं है, गृहस्थ है, कोई बड़े वेद पंडित नहीं है, लेकिन इन्होंने पूरे शास्त्रों का मर्म जान लिया कि भगवान की निस्वार्थ सेवा करना, दिन भर खड़े रहकर सेवा कर रहे। वरदराज जी विष्णु के वहां भी आज मंदिर है, वरदराज, वरदराज का मतलब है वरदान देने वालों के राजा, सबसे बड़े सबसे दयालु वरदान देने वाले व्यक्ति भगवान विष्णु। तो कहते हैं असली हमारे गुरु जी तो ये है, हालांकि गृहस्थ हैं, ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्मे हैं, लेकिन जो भगवान के बारे में जानता है और जो भगवान के बारे में जो जानता है वो अपने जीवन में उतारता है, यही तो है असली गुरु के लक्षण। तो बोले हम आज से इनको गुरु मानेंगे। तो उन्होंने कहा गुरु जी आप हमको शिक्षा दीजिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या करें। तो कांचीपूर्ण ने कहा वो खुद भी जो कर रहे हैं वही सिखाएंगे ना, जो जैसा है वो वैसे सीख देगा। तो उन्होंने क्या सिखाया रामानुजा को, बोले आप कोई सिंपल सेवा कीजिए, खुद भी सिंपल सेवा कर रहे हैं। तो इनको क्या सेवा दी, बोले यहां पास में सालाई किन्नरू नाम की एक कुआ है, आज भी कहते हैं कांचीपुरम में वो कुआ है, वहां से आप जल लेके आइए, वहां से जल लेके हम भगवान का अभिषेक करेंगे, तो आप ये सेवा कीजिए। तो रामानुजन ने देखा कि गुरुजी जो खुद कर रहे हैं वही बात हमको सिखा रहे हैं, गुरुजी सिंपल सेवा कर रहे हैं तो हमको भी उन्होंने सिंपल सेवा दे दी। उन्होंने रामानुजन को यह नहीं बताया, अरे आप ब्राह्मण हैं, आप अंदर आके आरती कीजिए, आप आके पूजा कीजिए, आप आके कुछ निजी सेवा कीजिए। हमारा जो व्याख्या है निजी सेवा की, निजी सेवा मतलब चरण दबाइए, ऐसे कुछ हमको निजी सेवा लगती है। लेकिन गुरुजी ने इनको क्या कहा, हम भी बाहर रह के पंखा लगाते हैं भगवान को, वैसे भी आप भी बाहर रह के भगवान को जल लाके दीजिए, फिर अन्य जो पुजारी भक्त है वो उनकी सेवा करेंगे। तो देखिए गुरुजी खुद भी थोड़ा दूर रह के सेवा करें, वही सीख उन्होंने उनको दी, बल्कि एक स्टेप बढ़ के दी, एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया। कैसे? कह रहे हैं जो पुजारी है वो रोज सेवा करेंगे, आप पुजारियों के दास बनिए, आप खुद पुजारी मत बनिए, आप पुजारियों के दास बनिए। हमारी परंपरा में भी ऐसा कुछ सुनने में आया है क्या, किसी ने ऐसा कुछ कहा कि आप पुजारियों के दास बनिए, उनको ज्यादा कृपा मिले, ऐसा कुछ सुनाई दिया आप? अभी कुछ ही दिन पहले हमने गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाया, उसमें परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक कथा बता रहे थे कि कैसे एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए उत्सुक हो गए और सारे भक्तों को बता रहे हैं हमारा अभिषेक कीजिए, आपके मन में जो भी आशा है जो भी इच्छा है वो आज पूर्ण होगी, आप हमारा अभिषेक कीजिए, आप हमारी सेवा कीजिए, हम सेवा स्वीकारेंगे। आज एक दो ही प्रसंग है श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में जहां भगवान होना उन्होंने स्वीकार किया। कई बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने कोई कहता कि आप ही स्वयं नारायण हैं तो अपने कान बंद कर देते, विष्णु विष्णु। एक साधारण जीवात्मा को अगर कोई विष्णु कहे तो ये तो सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन एक या दो प्रसंग है विच वेयर बिहाइंड क्लोज डोर्स, प्राइवेसी में, सब लोगों के सामने नहीं हुआ ये, ऐसे थोड़े एकांत में हुआ है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कहा कि आप हमारा अभिषेक कीजिए, तो नवद्वीप में अगर अभिषेक करना है, ऐसा कहते हैं अष्ट प्रहरीय लीला है वो, करीब करीब 24 घंटे ये लीला चली, मतलब कई कई घंटों तक उनका स्नान हुआ, उनका अभिषेक हुआ। सोचिए हम अभी लक्ष्मी नारायण जी का अभिषेक देखे, एक घंटे में समाप्त हो गया। कई बार यहां जन्माष्टमी के दिन महाअभिषेक होता है तो डेढ़ घंटे दो घंटे चलता है, और अष्ट प्रहरीय लीला में करीब कहते घंटों घंटों अभिषेक चला, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे उससे ज्यादा घंटे अभिषेक चलाए, इतना पानी कहां से आएगा? तो वहां गंगा नदी बहती है, तो कहते हैं बहुत सारे भक्त इस सेवा में जुट गए कि हम गंगा नदी से पानी लेके आएंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे। लेकिन जब सारे भक्त सोच रहे हैं अरे एक बार, बहुत ही ये दिस वेरी रेयर कि श्री चैतन्य महाप्रभु खुद कह रहे हैं कि हमारा अभिषेक कीजिए, तो सबको इच्छा हो गई जल लाके उनका अभिषेक करने की। लेकिन जब सारे भक्त अभिषेक कर रहे हैं तो इतने उत्सुक है और इतने आनंद में है, ये देख नहीं पाए कि शायद मैं नदी तक तो जा ही नहीं रहा हूं, मैं तो बीच रास्ते तक ही जा रहा हूं और वहां मेरे लिए एक कुंभ, एक वन पॉट ऑफ वाटर इज रेडी फॉर मी, वहां तो एक पूरा तैयार है पानी, और मैं आधे रास्ते में जाके वो पानी लेके भगवान का अभिषेक कर रहा हूं। कौन व्यक्ति है जो नदी से पानी मेरे लिए लेके आ रहा है? किसी भक्त को ज्ञान नहीं हुआ। होता है ना ऐसा, कभी कभी हम लोग खुश हो जाते हैं तो ये ध्यान नहीं आता कि हमारी सेवा पूरी होने के लिए किसी और भक्त ने भी सेवा की है, तब जाके हम लेवल 2 स्टेप 2 आगे की सेवा कर सकते हैं। तो सारे भक्त पूरा अच्छे से अभिषेक कर रहे, सेवा किए जा रहे हैं, और पूरा अभिषेक खत्म होने के बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमारे सामने दुखी को लेके आइए। तो सब भक्त बोलते हैं दुखी कौन है यहां पे, हम तो सब सुखी है, हम तो बहुत खुश हैं आपके अभिषेक करने में। तो बोलते हैं हम आपको परिचय कराते हैं कौन है दुखी। कहते हैं जब आप लोग अभिषेक करने में इतने मग्न हो गए, इतने खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो श्रीवास पंडित के घर में एक दासी थी, वो देख रही है कि अरे शायद यहां बहुत पानी लग रहा है, सब लोग आके उत्सुक होके अभिषेक करना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं सेवा करूं। और ये दुखी दासी ने ऐसा तय कर लिया, मुझे तो अभिषेक करने का मौका नहीं मिलेगा, चलो मैं जो लोग अभिषेक करें उनकी सेवा कर लूं। तो ये दुखी बार बार जाके नदी से पानी भर के लाती और उस पानी का उपयोग करके सारे भक्त अभिषेक कर रहे थे। तो भक्तों ने तो नहीं देखा, लेकिन भगवान ने देखा। तो भगवान कहते हैं उस दुखी को लेके आइए। तो सारे भक्त ढूंढते हुए गए, कहां है दुखी, कहां है दुखी, और दुखी को सामने लेके आए। और भगवान ने बोला, क्योंकि आप भक्तों की सेवा में ज्यादा आनंद लेती है, इसलिए आज से आपका नाम दुखी नहीं, आज से आपका नाम सुखी। और जैसे ही सुखी बोले, ऐसा नहीं कि केवल उच्चारण किया, कोर्ट में कभी कभी ऐसा देखा जाता है, एक केस चल रहा है, वो केस में देखते हैं कि किसी के ऊपर एक आरोप है, ये व्यक्ति ने चोरी की है, और फिर केस चल रहा है। तो इनके लॉयर बोलते हैं कि नहीं, चोरी नहीं की। फिर जज सोचते हैं सत्य क्या है, और कभी कभी फिर जज बोलेंगे, वो व्यक्ति उधर कटघरे में है जिसके ऊपर केस चल रहा है, वो कटघरे में खड़ा है कोर्ट में। तो बोले, तो मौजूद घटनाओं के आधार पे, जो भी हमारे पास प्रूफ है उसके आधार पे, कोर्ट ऐसा तय करता है कि इस व्यक्ति को फांसी की शिक्षा सुनाई जाए। वो व्यक्ति उधर ही गिर पड़ता है। क्यों? फांसी तो नहीं हुई आपको अभी, तो आप ये क्यों गिर पड़े आप? उनको मालूम है जज ने कहा है। किसने कहा है? जज ने कहा, साधारण व्यक्ति। तो जज का कहना और फांसी लगना एक ही है, केवल समय की दूरी है। या फिर सोचिए, एक केस चल रहा है और एक व्यक्ति कटघरे में खड़ा है, और जज बोले, तो सारे तमाम सबूतों के आधार पे हमने ऐसा सोच लिया है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, और हम ऐसा आदेश देते हैं कि इसको छोड़ दिया जाए। वो व्यक्ति उधर कटघरे में ही खुश हो जाता है। अरे, आप तो अभी पुलिस के कस्टडी में है, ऐसे थोड़ी छूटे हैं। तो बोले, जी नहीं, समय की देरी है। जज का बोलना और घटना होना, इसमें कोई अंतर नहीं है, काल का काल बीच में है केवल। तो वैसे ही जब कोई व्यक्ति, जैसे कोई महान संत कुछ कहते हैं, तो हम बोलेंगे, अरे महाराज ने हमको आशीर्वाद दे दिया, आप अच्छे भक्त बनेंगे। कहां मैं अच्छा भक्त बना? जी नहीं, आप देख नहीं पा रहे। अगर कोई बहुत शुद्ध भक्त कह दे, उनके बोलने में वो शक्ति है कि तुरंत वो हो जाए, लेकिन हमको आस्था नहीं है। वो जो अपराधी है जिसके ऊपर केस चल रहा है, उसको आस्था है जज के कहने के ऊपर, तो वो ज्यादा खुश हो जाता है। तो वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप दुखी नहीं है, सुखी हो। जैसे ही उन्होंने उच्चारण किया, इस दुखी केवल साधारण सी दासी के शरीर में कंपन होने लगा। कौन सा कंपन? भगवान के नाम, शुद्ध नाम जब लेते हैं तब जो कंपन होता है वो। उनकी आंखों में से खुशी के आंसू निकलने लगे, कृष्णा कृष्णा, भगवान की तरफ उनके मन में प्रेम जागृत हो गया, केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के बोलने पे। और श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दुखी ने केवल पीछे रह के किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि हम क्या सेवा कर रहे हैं। तो वैसे ये जो कांचीपूर्ण थे, ये ऐसी सेवा कर रहे थे, और क्योंकि वो स्वयं वैसी सेवा कर रहे थे, उनकी भावना भी वैसी थी, तो उन्होंने अपने शिष्य रामानुजा को भी वैसी ही सेवा दी। और अनेक अनेक दिनों तक श्रीपद रामानुजाचार्य कांचीपुरम में रह के ऐसी नम्र सेवा करते रहे और बहुत कृपा अर्जित करते रहे। उस समय एक बहुत बड़े आचार्य थे जिनका नाम था यमुनाचार्य। यमुनाचार्य उस समय काफी बूढ़े हो चुके थे। तो यमुनाचार्य अपने शिष्य कांचीपूर्ण को मिलने के लिए और एक उत्सव में भाग लेने के लिए श्रीरंगम से कांचीपुरम आए थे। तो कांचीपुरम में जब पहुंचे, तब तक उनके तक भी एक खबर पहुंच चुकी थी कि एक रामानुज नाम के एक युवा व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने यादव प्रकाश को भी परास्त कर दिया, और अलग अलग शास्त्रों के आधार पर उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स बताए, और यादव प्रकाश भी भ्रमित हो गए। तो यमुनाचार्य भी सोच रहे थे, ये कौन भक्त है जिसको विष्णु में इतनी आस्था है कि अपने गुरु जी से भी लड़ पड़े। तो ऐसा कहते हैं, जब यमुनाचार्य एक बार कांचीपुरम में आए थे, तो दूर से देखे यादव प्रकाश और उनके कुछ शिष्य जा रहे हैं। तब उन्होंने अपने शिष्यों को पूछा, इनमें से रामानुजा कौन है? तो शिष्यों ने बताया, वो जो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा तेजस्वी लग रहे हैं, यही है रामानुजा। तो उस समय यमुनाचार्य ने दूर दृष्टि से एक विशेष शक्ति उनमें डाल दी थी, और रामानुजाचार्य को यमुनाचार्य की भी बहुत सारी कृपा मिली। एक दिन जब यादव प्रकाश अभी गए थे काशी, तो वो भी वापिस आ गए, और कैसे स्वीकार करेंगे? स्वीकार तो नहीं कर सकते। तो फिर से एक बार थोड़ा मिलन हुआ रामानुजा और यादव प्रकाश का। थोड़ा सा शायद उनके मन में संकोच भी आ गया था, क्योंकि देखे थे कि मैं इतनी बड़ी, मैंने एक स्कीम बनाई थी इसको मारने के लिए, लेकिन ये इसमें से भाग गया। तो जब वापस आए, तो उस समय ऐसा कहते हैं वहां के जो उस प्रदेश के राजा थे उनकी एक बेटी थी और उन बेटी को एक भूत ने पकड़ लिया। तो जहां जैसे देखा जाता है कोई सबसे बड़े जो संत है उनको बुलाएंगे, तो यादव प्रकाश एक बहुत बड़े गुरु थे, राजा ने यादव प्रकाश को बुलाया, बोलिए कुछ मंत्र का उच्चारण कीजिए और इस भूत को निकालिए। यादव प्रकाश जो बहुत बड़े तपस्वी थे मंत्र उच्चारण करने लगे, लेकिन उस राक्षस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। बगल में रामानुज भी खड़े थे, तो उस राजकन्या के मुख से वो राक्षस बोला, जब तक मेरे सर के ऊपर कोई महान भक्त अपने चरण नहीं रखे तब तक मैं इस शरीर का त्याग नहीं करूंगा। तो सब लोग देखने लगे कौन है अच्छा भक्त, और उस समय तक ये कुछ घटनाएं हुई थी, तो सब लोगों ने देखा यहां तो एक ही भक्त है, वो है रामानुज, तो शायद रामानुज चरण के तरफ ये इशारा हो रहा है। तो रामानुज भी थोड़े संकोच में थे कि कैसे हम राजकन्या के सर के ऊपर अपना पैर रखें, लेकिन उन्होंने रख दिया, और जैसे ही रखा तो जो कन्या थी वो नीचे गिर गई और राक्षस उसमें से बाहर निकल गया और ये राजकन्या जो थी वो बहुत कृतज्ञ हो गई। तो यादव प्रकाश ने ऐसे कुछ कुछ घटनाएं देखी कि ये पंडित है, इसकी भावनाएं बहुत शुद्ध हैं, इसको भगवान हमेशा रक्षा करते हैं, और सबके सामने ये साबित हो गया कि हालांकि ये शिष्य है लेकिन यही सबसे ज्यादा शुद्ध है, और ब्रह्म राक्षस को भी इन्होंने छुड़ा दिया। तो उस समय यादव प्रकाश थोड़ा थोड़ा स्वीकार करने लगे कि शायद रामानुज बहुत अच्छे भक्त हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। एक बार ऐसे हुआ कि दोनों में फिर से एक चर्चा हो गई और यादव प्रकाश बोल रहे हैं कि देखो शास्त्रों में कहा है ब्रह्म एक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान है, भगवान के भक्त हैं, ऐसा है। तो रामानुज ने युवा अवस्था में शिष्य के रूप में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो अपने गुरु को पूछे, गुरु महाराज हम आपको एक सवाल पूछते हैं, अगर यहां घोषणा हुई इस राज्य के राजा हमारे समक्ष आने वाले हैं तो कितने व्यक्ति आएंगे, पकड़े गए? क्योंकि उनके दृष्टि से कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, एक ही सत्य है, शक्ति भगवान के दिव्य शरीर में से जो प्रकाश आ रहा है वही सर्वव्यापी है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो कहते हैं राजा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जब घोषणा होती है कि एक राजा आ रहे हैं, राजा के साथ साथ उनकी रानी भी आएगी, राजा के साथ साथ उनके मंत्री भी आएंगे, राजा के साथ साथ होते हैं ना ढोल बजाने वाले, खबरदार राजा आ रहे हैं, वो भी आएंगे। तो राजा जब हम कहते हैं कि राजा आने वाले हैं, मतलब राजा के साथ साथ अनगिनत लोग भी आने वाले हैं। जैसे कई बार इस देश के पंत प्रधान, प्रधानमंत्री कोई दूसरे देश में टूर करते हैं, तो हमको न्यूज़पेपर में न्यूज आती है सो एंड सो पर्सन विजिट्स चाइना, ऐसा नहीं कि अकेले गए, साथ में बहुत सारे लोग भी जाते हैं, लेकिन उनका उल्लेख नहीं होता है। ये तो समझदार व्यक्ति के लिए काफी है, प्रधानमंत्री गए मतलब उनके साथ बाकी सारे बहुत सारे मंत्री भी गए, सब लोग गए। तो रामानुजाचार्य ने इतना सिंपल उदाहरण दिया और उनको कहा जहां जहां शास्त्रों में लिखा है कि एक ही सत्य है, वो एक सत्य तो है लेकिन वो एक सत्य अलग अलग रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो कब जब कहते हैं भगवान एक है, मतलब भगवान एक है लेकिन उस एक भगवान के अनेक अनेक रूप है, उस अनेक अनेक रूपों के अनगिनत भक्त हैं, और ये सारे उसी एक सत्य के अंदर गिने जाते हैं। जैसे एक राजा आता है मतलब अनेक अनेक लोग भी उसके साथ में आते हैं। ये जैसे ही यादव प्रकाश ने सुना, उन्होंने मान लिया कि रामानुजन ने सही में बुद्धि के तौर पे हमको बहुत ही अच्छा एक तत्व बताया, लेकिन फिर भी उनके मन में जो गर्व था कि मैं गुरु और ये शिष्य, स्वीकार नहीं कर पाया। और उस दिन उन्होंने अपने शिष्य को कहा आप यहां से दूर चले जाइए, आप जब तक हमारे आश्रम में रहेंगे तब तक हमारी कोई नहीं सुनेगा, केवल आपकी सुनेंगे। तो वो स्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने उनको मारना छोड़ के उनको कह दिया कि आप यहां से चले जाइए। उस समय के दौरान ऐसा कहते हैं एक व्यक्ति थे वहां जिनका नाम था महापूर्ण। तो पहले व्यक्ति कौन थे? कांचीपूर्ण, वो कांचीपुरम में रहते, तो कांचीपूर्ण। वैसे और एक व्यक्ति थे जो थे जिनका नाम था महापूर्ण। कांचीपूर्ण और महापूर्ण यमुनाचार्य के शिष्य हैं। तो यमुनाचार्य जी, हमने आपको कहा बूढ़े हो गए थे, तो बूढ़े होने लगे तो उनको भी एक प्रश्न आया कि आगे चल के प्रचार कौन करेगा। तो उन्होंने अपने शिष्य महापूर्ण को कहा आप श्रीरंगम से कांचीपुरम जाइए और वहां जो रामानुज है उनको लेके आइए, हम उनको आगे क्या करना है ये बताना चाहते हैं। तो महापूर्ण श्रीरंगम से कांचीपुरम आए और देखे कि रामानुज यहां पे सेवा कर रहे हैं वो पानी लाने की, है ना, भगवान की सेवा के लिए। तो वो जब सेवा करते हैं रामानुज तो इतनी कृतज्ञता से करते और इतने भावपूर्ण करते कि उनका इधर उधर कोई ध्यान नहीं होता। अभी सोचिए कितनी साधारण से साधारण सेवा है, पानी एक एक मटके में पानी लेके आना है, लेकिन उसमें भी जब पानी लेके आते तो कुछ ऐसे एकदम ध्यान मग्न होकर पानी लेके आते, कितना सौभाग्य है मेरा, मैं पानी लेके आ रहा हूं। तो ये महापूर्ण सोचे इन इसको कैसे हम बताएं कि आपको यमुनाचार्य ने वहां श्रीरंगम में बुलाया है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो ऐसा कहते हैं उस रास्ते में जहां से रामानुज पानी के मटके को लेके जाते थे वहां बगल में खड़े हो गए और यमुनाचार्य ने, उनके गुरु ने कुछ श्लोक रचे थे भगवान विष्णु की प्रशंसा में जिसको कहते हैं स्तोत्र रत्न। ये स्तोत्र रत्न बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक है जिसमें भगवान विष्णु की स्तुति है और ये ऐसे बगल में खड़े होके गाने लगे उन श्लोकों को। तो जैसे ही रामानुजाचार्य मटके में पानी लेके जा रहे हैं और बीच में ये श्लोक सुने उन्होंने तो वो भी भाव विभोर हो गए और बोले आप कौन है, आपको भी भगवान विष्णु से बहुत प्रेम लग रहा है, बताइए आप कौन है। तो उन्होंने कहा हम श्रीरंगम से आए हैं और पूरे श्री संप्रदाय के जो गुरु है यमुनाचार्य वो आपको वहां बुला रहे हैं, तो क्या आप हमारे साथ में आएंगे। तो उनको समझ में आया ये भी बहुत अच्छे भक्त हैं, यमुनाचार्य हमको बुला रहे हैं तो भगवान की सेवा से निवृत्त होके हमको भक्तों की सेवा के लिए जाना होगा। ऐसा कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने चार संप्रदायों से दो दो शिक्षाएं ली गौड़ीय संप्रदाय के लिए। तो कहते हैं श्री संप्रदाय से कौन सी दो शिक्षाएं ली, दो तत्व लिए। एक लिए शुद्ध भक्ति, मतलब ऐसी भक्ति जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, केवल हम देने के लिए भक्ति करेंगे, कुछ लेने के लिए भक्ति नहीं करेंगे। और दूसरा तत्व उन्होंने लिया श्री संप्रदाय से, वो है वैष्णव सेवा। ये दो तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से लिए। तो देखते हैं हम जैसे रामानुजाचार्य है, उनको जैसे ही पता चला कि एक यमुनाचार्य हमको बुला रहे हैं तो उन्होंने तराजू में उसको तोला। एक हम भगवान की सेवा में नियुक्त है, हमारी ये डेली रोज की सेवा है और ये सेवा छोड़ के हम यमुनाचार्य के पास जाएं क्या। तो एक साधारण व्यक्ति क्या करेगा, अगर वो कनिष्ठ है तो बोलेगा अरे क्या करना है हमको यहां वहां जाके, हम तो भगवान की सेवा में है। लेकिन जैसे भक्त ने बुलाया तो भगवान की सेवा के ऊपर उन्होंने भक्त की सेवा को रखा और तुरंत वहां से श्रीरंगम चले गए यमुनाचार्य के पास। लेकिन देखिए कैसे उनका अलग घटना हो गई उनके जीवन में। कहते हैं श्रीरंगम कावेरी नदी के तट पे है, ऐसे कावेरी नदी श्रीरंगम को एक जैसे गले में हार डालते हैं ना वैसे उसको ऐसे गोल जाती है। तो श्रीरंगम एक टापू की तरह है और कावेरी नदी ऐसी आती है और ऐसे गोल होके फिर से मिलके आगे जाती है। तो जैसे महापूर्ण और रामानुज कावेरी नदी के तट पे पहुंचे वहां देखे कि बहुत सारे लोग वहां रो रहे थे, मातम मना रहे थे वहां पे। तो सबको पूछने लगे क्या हो गया, तो बोले हमको बहुत दर्द के साथ आपको बताना पड़ रहा है ये कि परम गुरु यमुनाचार्य इस जग में से निकल गए, इसलिए हम रो रहे हैं। तो महापूर्ण भी रोने लगे, रामानुज रोने लगे, अरे हम उनको मिलने के लिए वहां से आए और यमुनाचार्य चले गए और यमुनाचार्य की इच्छा थी कि हम रामानुजाचार्य को बताएंगे कि आगे कैसे प्रचार हो, आगे कैसे वैष्णव धर्म बढ़े, अब हमको कैसे बताएंगे। तो यमुनाचार्य का जो शरीर था वो वहीं रखा था और महापूर्ण और रामानुजाचार्य वहां पहुंचे और रामानुजाचार्य ने उनको दंडवत प्रणाम किया। तो देखे शरीर दिव्य था, लेकिन एक बात देखी उन्होंने कि उनके तीन उंगलियां ऐसी बंद थी, उस देह की तीन उंगलियां बंद थी। तो रामानुजाचार्य को एक प्रश्न उठा, उन्होंने उनके सेवकों को पूछा क्या अन्य समय पे यमुनाचार्य जी जब सोते थे या चलते थे तो क्या ऐसी तीन उंगलियां बंद रख के चलते थे। तो बोले नहीं, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। तो बोले देखिए इनके उंगलियां देखिए बंद है। बोले अरे हाँ, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो फिर रामानुजाचार्य बोले क्या इनकी कोई तीन इच्छाएं थी जो ये पूरा करना चाहते थे जिस वजह से इन्होंने ऐसी उंगलियां बंद रखी है। तो ये सारे शिष्य बोले जी नहीं, हमको तो ऐसे कोई ज्ञात नहीं है कि कोई तीन इच्छाएं थी। तो रामानुजाचार्य ने थोड़ा ऐसे मनन किया, शुद्ध हैं, भगवान की सेवा किए हैं, गुरु के आज्ञा का पालन किए हैं और गुरु की सेवा छोड़ के यमुनाचार्य जी के पास में आए हैं, तो ध्यान किया तो उनको मन में ये प्रकाश हो गया कि यमुनाचार्य की तीन इच्छाएं क्या थी। तो उन्होंने आंखें खोली और बोले, हम सब के समक्ष एक प्रतिज्ञा लेते हैं। पहली प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम वैष्णव धर्म का प्रचार पूरी पृथ्वी पे करेंगे। जैसे उन्होंने कहा तो यमुनाचार्य की एक उंगली ऐसी खुल गई, देहांत हो चुका है, चले गए हैं वैकुंठ, लेकिन फिर भी एक उंगली ऐसी खुल गई। फिर बोले, व्यास मुनि और पराशर मुनि, इन्होंने तो सारे वेद लिखे हैं, तो इनके प्रति कृतज्ञता है हमको, इसलिए हम अपने एक शिष्य का नाम पराशर रखेंगे। ऐसा जैसे कहा तो दूसरी उंगली खुल गई। तो ऐसा हुआ था कि यमुनाचार्य व्यास ऋषि और पराशर ऋषि के प्रति बहुत कृतज्ञ थे और सोचते थे कि जिन्होंने हमको वेद दिए हैं हम उनका हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए, कृतज्ञता करनी चाहिए। देखिए, हमारे संप्रदाय में भी गुरु महाराज की जब जन्मदिन होता है, उसको जन्मदिन नहीं कहना चाहिए लेकिन साधारण बातों में हम लोग जन्मदिन कहते हैं, उसको कहते हैं व्यास पूजा। क्यों कहते हैं व्यास पूजा? क्योंकि गुरु महाराज परंपरा में व्यास ऋषि के ही प्रतिनिधि हैं। तो वैसे यमुनाचार्य जी की भी इच्छा थी और रामानुजाचार्य ने उसको परख लिया, तो बोले ऐसा, तो दो उंगलियां खुल गई। फिर रामानुजाचार्य सबके समक्ष बोले, और हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि व्यास ऋषि ने जो वेदांत सूत्र लिखा है उसके ऊपर हम एक वैष्णव टीका लिखेंगे जिसका नाम होगा श्री भाष्य। लक्ष्मी देवी के संप्रदाय में है हम, तो श्री भाष्य। जैसे ही कहा तो उनका तीसरी उंगली भी खुल गई। तो सबके समक्ष जब देखा लोगों ने कि तीन उंगलियां ऐसी खुल गई, तब उनको समझ में आया ये जो व्यक्ति है यही आगे के आचार्य है, और सब चिल्लाने लगे, आचार्य मिल गए, हमको आचार्य मिल गए। और उस दिन से रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य के रूप में सेवा करने लगे। एक बार रामानुजाचार्य कुछ संदेह बताए कांचीपूर्ण को कि क्या आप इन संदेहों का स्पष्टीकरण करेंगे भगवान के समक्ष। तो कहते हैं वरदराज जी ने ये छह तत्वों का उन्होंने कांचीपूर्ण को बताया, फिर कांचीपूर्ण ने रामानुजाचार्य को बताया क्या क्या है। वरदराज जी ने बताया, मैं सर्वश्रेष्ठ भगवान हूं। दूसरा चीज बताया, चित्त चीज जिसमें प्राण है, अचित चीज और ब्रह्मन मतलब भगवान, ये तीनों चीज अलग अलग है, ये एक नहीं है जैसे मायावादी लोग बोलते हैं। तीसरा बताया, मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है शरणागति, सेवा करना। चौथी चीज बताइए, अगर कोई व्यक्ति शरणागत है जिसने जीवन भर मेरी सेवा की है, ऐसा हो सकता है कि मरने के समय उसको मेरा ध्यान नहीं हो, मेरा स्मरण नहीं हो किसी कारणवश, लेकिन अगर उसने जीवन भर शरणागति की है, मेरी सेवा की है, वो मुझे भूल जाए लेकिन मैं उसको कदापि नहीं भूलूंगा। पांचवी चीज बताई कि अगर कोई भक्त पूरे जीवन भर मेरी सेवा करे तो मृत्यु के उपरांत उसको मैं मुक्ति प्रदान करूंगा, वैकुंठ ले जाऊंगा। और छठवीं चीज बताई कि आप महापूर्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए। तो आज तक कांचीपूर्ण उनको सेवा दे रहे थे तो उस रूप से गुरु थे, लेकिन अभी भगवान ने बताया आज से आप महापूर्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए। तो कांचीपूर्ण ये बात रामानुज को बता रहे हैं कि आज से भगवान कह रहे हैं आप महापूर्ण को आपका गुरु स्वीकार कीजिए। तो इन गुरु को द्वेष नहीं था, इन गुरु को ऐसा नहीं लगा अरे मेरा एक शिष्य कम हो रहा है, ने बोले चलिए आप महापूर्ण से शिक्षा स्वीकार कीजिए। और उस दिन से फिर महापूर्ण, तो ये घटना हो रही है कांचीपुरम में। तो रामानुजाचार्य ने जैसे ही सुना कि वरदराज जी की इच्छा है महापूर्ण मेरे गुरु बनेंगे, तो कांचीपुरम से श्रीरंगम की तरफ प्रस्थान करने लगे। और वहां यमुनाचार्य के जो अलग अलग शिष्य थे उन्होंने महापूर्ण को यह बताया कि हमारे आचार्य है रामानुज, लेकिन उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको आप थोड़ा ज्ञान दीजिए। तो वहां से महापूर्ण चलने लगे श्रीरंगम से कांचीपुरम के तरफ। तो श्रीरंगम और कांचीपुरम के बीच में एक स्थान है जहां पे एक नदी बहती है और नदी के बगल में एक बकुल वृक्ष है। तो ऐसा कहते हैं रामानुजाचार्य यहां अपने गुरु से मिलने के लिए आ रहे हैं, गुरु अपने शिष्य को मिलने के लिए आ रहे हैं, और जहां उनका मिलन हुआ, जैसे एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से आलिंगन किए और एक दूसरे का प्रेम उनका प्रदर्शित हो गया। और गुरु ने कहा क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है कि आप हमारा शिष्यत्व स्वीकार करें, हम यही यज्ञ करेंगे और हम यही आपको दीक्षा देंगे। तो उसी स्थान पे उन्होंने उनको दीक्षा दे दी और महापूर्ण रामानुजाचार्य के गुरु बन गए। और फिर ये महापूर्ण के पास में रामानुज गए एक दिन और बोले, गुरु महाराज आपने हमको बहुत सारा शिक्षा दी है, अभी और शिक्षा दीजिए और हमको बताइए। तो उन महापूर्ण ने बताया, अभी और आगे की शिक्षा देने के लिए और एक व्यक्ति है। कौन है वो? गोष्ठीपूर्ण। तो पहले कौन गुरु थे? कांचीपूर्ण। फिर दूसरे व्यक्ति भगवान वरदराज ने उनको बताया, आप महापूर्ण की शरण लीजिए। और उन महापूर्ण ने भी उनको बताया कि आगे का जो नॉलेज हो हमारे पास भी नहीं है, उसके लिए आप गोष्ठीपूर्ण के लिए जाइए। देखिए, ये तीन गुरु है रामानुजाचार्य के। वंदे गुरुन ईश भक्तान, श्री चैतन्य चरितामृत का पहला श्लोक है ये। वंदे गुरुन, गुरुन मतलब अनेक वचन है ये, एक वचन या द्विवचन नहीं है, अनेक वचन है। तो कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मैं सारे गुरुओं को प्रणाम कर रहा हूं। तो हम सोचते हैं एक ही गुरु है क्या, अनेक गुरु नहीं है? इसका मतलब है दीक्षा हमारी एक गुरु से हो, लेकिन शिक्षा के लिए तो हम अनेक अनेक गुरुओं से सीख सकते हैं। हमको जो दीक्षा देते हैं वो तो शुद्ध भक्त है, लेकिन शायद वो हमको निजी तौर पे कुछ शिक्षा नहीं दे पाए। हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति हमको शिक्षा देता है, जो भी हमको कोई सीख देता है, वो सब व्यक्ति हमारे लिए शिक्षा गुरु है। वो हम उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। तो यहां हम देखते हैं, पहले कांचीपूर्ण है। कांचीपूर्ण ने उनको बताया, भगवान कहते हैं आप महापूर्ण की शरण लीजिए, उनको द्वेष नहीं है। महापूर्ण की शरण लेने के बाद में महापूर्ण को बताइए आप हमको और शिक्षा दीजिए। महापूर्ण उनको बता रहे हैं कि आप गोष्ठीपूर्ण की शरण लीजिए। किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे से कोई भी द्वेष नहीं है। और फिर गोष्ठीपूर्ण के सामने जब आए तो यह घटना हो गई जो हमने नाटिका में देखी। हम आपको फिर कुछ छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं रामानुजाचार्य के जीवन में से। ऐसा कहते हैं, हम देख रहे हैं कौन सी कहानी सुनाए। एक बार रामानुजाचार्य ये जो गोष्ठीपूर्ण थे उनको देखने लगे, तो गोष्ठीपूर्ण कई कई घंटों तक ऐसे ध्यान में बैठे थे। और जब ध्यान से उठे तो रामानुजाचार्य उनके पास गए और बोले, गुरु महाराज हमने देखा बहुत घंटों तक ध्यान मग्न थे, अब क्या ध्यान लगा रहे थे? तो कहते हैं, हमारी आंखों में केवल हमारे गुरु के चरण थे, यमुनाचार्य के चरणों के ऊपर हम ध्यान लगा रहे थे। और हम जब भी कुछ ऐसा जप करते हैं तो यमुनाचार्य के दिव्य नाम का नाम जप करते हैं। तो रामानुजाचार्य को बहुत आश्चर्य हुआ, अरे हम सोच रहे थे कि आप भगवान के चरणों पे ध्यान लगाते हैं, आप भगवान का नाम जप करते हैं। जी नहीं, बोले हम गुरु के नाम का नाम जप करते हैं। तो देखिए, वैष्णव सेवा, गुरु निष्ठा, ये श्री संप्रदाय में इसको बहुत महत्व है। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो एक घंटे में डेढ़ घंटे में कवर करना बहुत कठिन है, लेकिन एक ऐसी घटना आती है जब उस प्रदेश के दूसरे एक राजा थे जिनको रामानुजाचार्य से द्वेष हो गया। वो शिव जी के भक्त थे, तो एक बार रामानुजाचार्य को मारने के लिए आ गए, उनका प्राण लेने के लिए आ गए। तब उनके एक दूसरे भक्त थे कुरेश, उनके रामानुजाचार्य के शिष्य थे। तो रामानुजाचार्य के शिष्य कुरेश ने बताया, राजा के सैनिक आ रहे हैं आपको मारने के लिए, लेकिन वो आपको जानते नहीं है, तो एक काम कर लीजिए, आपके कपड़े आप हमको दे दीजिए और हमारे कपड़े आप पहन लीजिए, क्योंकि कुरेश एक गृहस्थ थे। तो उस समय सन्यासी ये कपड़े पहनते थे और गृहस्थ सफेद कपड़े पहनते हैं। तो कहते हैं यहां आके जब सैनिक ढूंढेंगे तो सैनिकों को एक ही मालूम है, ये ऐसे अरुण वस्त्र जिसके हैं वो सन्यासी है और उसको हमको मारना है, तो हम वो वस्त्र पहनते हैं। तो रामानुजाचार्य ने सोचा हम ऐसे कैसे करें, लेकिन मौका ऐसा था और प्रचार कार्य भी बहुत जरूरी था, तो उन्होंने विवश होकर अपने शिष्य की बात मान ली और कुरेश ने वो अरुण वस्त्र पहन लिए और वो रामानुजाचार्य बन गए। और रामानुजाचार्य सफेद वस्त्र पहन के वहां से भाग गए। तो वो राजा के सैनिक आए और उन्होंने क्या किया, रामानुजाचार्य को पूछा, उन्होंने उनको लेके गए राजा के पास। राजा कहता है, बोलिए सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन है, श्री कृष्ण भगवान है कि शिवजी भगवान है? तो कुरेश जो रामानुजाचार्य के वस्त्र पहने थे कहे कि हम तो नहीं बदलेंगे, श्री विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कह के इतना अहंकार था राजा को, राजा ने कहा इसकी आंखें फोड़ दो। तो कुरेश की आंखें उन्होंने फोड़ दी और कुरेश अभी अंधे हो गए। तो जब ये जो रामानुजाचार्य है भाग गए ना वहां से और कुरेश की आंखें फोड़ दी, तो उस समय फिर कुरेश श्रीरंगम में ही रहते थे, तो राजा ने ऐसा नियम बनाया कि ये जो रामानुजा है ये तो भाग गया शायद, लेकिन उसके जितने भी अनुयायी हैं उनको श्रीरंगम में प्रवेश मत देना। ये लोग बहुत विष्णु विष्णु करते हैं ना, इनको विष्णु से प्रेम है, मैं देखता हूं इनका प्रेम कैसे सफल होता है। कोई भी विष्णु भक्त रामानुजाचार्य के अनुयायी अगर मंदिर में आए उनके लिए प्रवेश निषेध है। तो एक दिन कुरेश अंधे हैं, क्या दर्शन लेंगे, लेकिन उस स्थान पे पहुंचे, बोले चलो देखते हैं, हम तो भगवान का दर्शन नहीं ले सकते लेकिन शायद भगवान हमको देख के खुश हो जाए, चलो हमारे भक्त हमको मिलने के लिए आए हैं, ऐसा कहते हैं। उत्तर भारत में एक अंधे भक्त थे, अलग अलग नाम बताते हैं इसलिए हम नाम नहीं बताएंगे। तो एक दिन मंगल आरती के लिए भागते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में एक व्यक्ति जो बाहर जा रहे थे उनसे टकराए, और वो व्यक्ति बोलते क्या महाराज अंधे हैं, क्या इतने जल्दी में जा रहे हैं मंगल आरती के दर्शन के लिए। तो उन्होंने उनको थोड़ा तिरस्कार किया, मजाक उड़ाया, इतना भी क्या भाग के जाना। तब उस अंधे भक्त ने कहा, हम दर्शन लेने के लिए नहीं जा रहे, हम दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम भगवान को देखें, यह महत्वपूर्ण है कि भगवान हमको देखे। चलो आज भी ये सारे भक्त हैं, आज भी ये सारे भक्त हमारा दर्शन लेने के लिए उत्सुक हैं। तो वैसे ही कुरेश अंधे हैं लेकिन श्रीरंगम मंदिर में जा रहे हैं, तो सैनिकों ने रोक दिया उनको, अरे राजा ने कहा है रामानुजाचार्य के अनुयायियों को नहीं छोड़ना है। तो एक सैनिक दूसरे सैनिक को बोलता है, अरे लेकिन इसको छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह बहुत अच्छा आदमी है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। तो दूसरा व्यक्ति ऐसे कहता ना हम लोग, अरे अच्छा व्यक्ति है छोड़ दो इसको, सज्जन है ये व्यक्ति। तो उस सैनिक ने ऐसे कहा, तो दूसरा सैनिक बोलता है, अच्छा सज्जन है क्या ये, अच्छा आदमी है क्या, चलो इसको छोड़ देते हैं। तो उन्होंने ऐसे वो भाले जो थे दो वैसे हटा दिए और कुरेश को जाने का उन्होंने इशारा किया। जैसे ही कुरेश ने यह सुना बोला, अरे मतलब मेरे जाने का क्वालिफिकेशन पात्रता क्या है मेरी, कि मैं अच्छा आदमी हूं, मैं अच्छा हूं इसलिए मुझे आप अंदर छोड़ेंगे, मतलब मेरा गुरु से नाता टूट गया, मुझे अंदर जाने की अनुमति क्यों मिलनी चाहिए, मालूम है मेरा एक ही पात्रता है इस जीवन में, एक ही क्वालिफिकेशन, क्या, मैं रामानुज का शिष्य हूं और आपने अभी मेरा एक दूसरा क्वालिफिकेशन निर्माण कर दिया। मेरी पहचान है मैं रामानुज का शिष्य हूं, मुझे लगता था यही मेरी पहचान है, आपने अभी बता दिया कि मेरी इस जगत में दूसरी पहचान है, क्या, कि मैं स्वयं से एक अच्छा आदमी हूं जिसमें मेरे गुरु महाराज का कोई श्रेय नहीं, जिसमें मेरे गुरु महाराज का कोई हाथ नहीं है, यह मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। तो एक व्यक्ति थे जिनको श्रीरंगम मंदिर में जाने की अनुमति मिली, लेकिन उन्होंने उसको बोला, अगर मेरा अच्छापन मेरे गुरु से मेरी पहचान के बीच में आ रहा है तो वो अच्छापन भी मुझे नहीं चाहिए। और कुरेश वहां से लौट गए, बोले जब रामानुजा का शिष्य होने के नाते मुझे जब एंट्री मिलेगी मंदिर में वही मेरा सही प्रवेश है, मेरे गुणों के आधार पर अगर मुझे प्रवेश मिल रहा है तो वो प्रवेश मेरे लिए नहीं चाहिए मुझे। तो देखिए कैसे श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य के शिक्षाओं के आधार पर भगवान की सेवा से ज्यादा उनको भक्तों की सेवा में ज्यादा रुचि है, गुरु निष्ठा में उनको ज्यादा रुचि है। तो हम देखते हैं ये ऐसे अनेक अनेक इनके जीवन में अनेक अनेक प्रसंग है जिससे हम ऐसा देख सकते हैं। कहते हैं रामानुजाचार्य के और एक शिष्य थे जिनका नाम था वडुग नंबी। तो यह वडुग नंबी की एक सेवा थी कि रामानुजाचार्य रोज दूध पीते थे, उनको दूध गर्म करके उबाल के पिलाते थे। तो एक दिन ये वडुगा नंबी जब दूध उबाल रहे हैं तो रामानुजाचार्य के घर के बाहर से भगवान का एक यात्रा जा रही है, रथ यात्रा जा रही है, तो सारे लोग सारे काम छोड़ के सारी सेवा छोड़ के भगवान के पीछे भागे, लेकिन ये वडुगा नंबी बैठ के दूध को ही उबाल रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने पूछा, अरे भगवान जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो जी नहीं, बोले उस भगवान के प्रतिनिधि के लिए दूध उबालना है, यह भगवान के दर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने एक कथा बताई आपको, भगवान के रामानुजाचार्य के ऊपर की कथा बताई, यमुनाचार्य की कथा बताई, गोष्ठीपूर्ण की कथा बताई, हमने आपको एक कथा बताई वो बताई वडुगा नंबी की कथा बताई, एक कुरेश की कथा बताई, कैसे इनके दृष्टि से भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों की सेवा। तो वैसे ही हम इस हमारे मंदिर में भी देखते हैं कि ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये करीब करीब 150 साल पुराना है। ऐसा कहते हैं अनेक अनेक भक्त यहां आते थे और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते थे, उनको प्रार्थना करते थे। और ऐसा कहते हैं गांधी जी भी यहां पास में मणि भवन में रहते थे। तो ऐसी हमने कहानी सुनी है कि एक बार अंग्रेज लोग आए गांधी जी को गिरफ्तार करने के लिए। तो गांधी जी वहां से जो भागे तो सोचे अब हम कहां छुपे, तो कहते हैं ये हमारे जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसके अंदर जाके लक्ष्मी नारायण के पास उन्होंने शरणागति ले ली, तो अंग्रेजों से बच गए। तो ऐसे ये लक्ष्मी नारायण मंदिर यहां 150 साल से है, और उसके उपरांत फिर यहां राधा गोपीनाथ जी आए हैं, और सारे भक्तों के लिए श्री श्री लक्ष्मी नारायण जी ने हमको एक आश्रय दिया है, और फिर साल में एक बार हम यहां ये महोत्सव मनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने हमको एक मौका दिया श्री रामानुजाचार्य के बारे में कथा बताने का, हम बहुत बहुत आभारी हैं। श्रीपद रामानुजाचार्य की जय। श्री श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।